بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الأثر اسلامک سینٹر ملبن کی آج کی یہ مجلس ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مجلس ہے. اس وقت کورونا وائرس یا کووڈ 19 کی وجہ سے میلبرن کا شہر لاک ڈاؤن میں ہے، لیکن ریلیجس سینٹرز یعنی مسجد، امام بارگاہ، اذا خانہ، اسے کھولنے اور اس کے اندر سے آن لائن پروگرام کرنے کی اجازت ہے. امام کا گھر ہے، قانونی اور شرعی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس لیے اپنے دستور کے مطابق العصر اسلامک سینٹر کی انتظامیہ نے اذا خانہ آباد رہے، امام بارگاہ آباد رہے. آج بھی یہ پروگرام امام بارگاہ ہی میں رکھا ہے، اور انشاءاللہ اختتام مجلس پر یہاں کے دستور کے مطابق تابوت بھی برآمد ہوگا. آن لائن کی وجہ سے مومنین یا مومنات شریک تو نہیں ہو پائیں گے اذا خانے کے اندر، لیکن تابوت برآمد ہوگا، اس کی آپ زیارت کر سکیں گے. اور میرا بیان بھی یہی چیز میرے ذہن میں ہے کہ جو بھی ہوں گے وہ گھر سے سن رہے ہوں گے، اس اعتبار سے اسی انداز سے ہوگا. لیکن آج یہ مسلسل میری چوتھی تقریر ہے سورہ مائدہ کی آیت پر. ایک ہی آیت میں نے منتخب کی تھی ماہ مبارک کے رمضان کے بعد کے لیے. اب اس کے اندر چھٹے امام کی شہادت کی مجلس آئی، تب بھی یہی آیت عنوان تھی. آٹھویں امام کی ولادت کا جشن آیا، تب بھی یہی آیت عنوان تھی. نویں امام کی شہادت کی مجلس ہوئی، تب بھی یہی آیت تھی. آج پانچویں امام کی شہادت کی مجلس میں بھی یہی آیت ہے، اور دو دن کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی جو مجلس ہے اس میں بھی یہی آیت سرنامہ کلام ہوگی. یہ پانچ مسلسل تقاریر، گرچہ ایک تقریر اور دوسری تقریر کے بیچ میں خاصا گیپ ہو جاتا ہے، کبھی 10 دن کبھی 12 دن، لیکن یہ پانچ مسلسل تقاریر ایک ہی آیت پر ہیں، اور ہر تقریر میں کسی ایک عنوان کو منتخب کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ جس نے اگر پہلی مجالس نہیں سنی تو آج کے مجلس اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یا جس نے اگر آج کے مجلس نہیں سنی پہلے کی کوئی مجلسیں سنی ہو تو اس نے نامکمل بات سنی ہو، ایسا نہیں. آیت اتنی اہم ہے کہ اس سلسلے کی پہلی مجلس میں، دیکھیں قرآن کی ہر آیت اہم ہوتی، جب یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اہم ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے موجودہ حالات کے تحت یا جس علاقے میں ہم لوگ ہیں وہاں کے تحت. آیت یہ اتنی اہم ہے کہ ہمارے فقہا اور مجتہدین کے پاس فتویٰ دیتے وقت جن چند آیتوں سے بہت سارے مسائل ڈرائیو کیے جاتے ہیں ان میں سے یہ ایک آیت ہے. یعنی اگر اس آیت میں میں بہت سرسری ایک نگاہ ڈالوں تو کم از کم 100, 200, 250, 500 مسئلے اسی ایک آیت سے مجتہدین نے واجب یا حرام کے دیے، وہ کبھی الگ بحث ہوگی. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو، ایک اصول بتا رہا ہے قرآن قیامت تک کام آنے والا، کہ انسان کے لیے سوسائٹی اور کمیونٹی اور معاشرے سے کٹ کے رہنا بھی جائز نہیں. رہنا تمہیں ایک سوسائٹی اور معاشرے میں ہے، یہ اسلام ہے، ला रुहबानियत फिल इस्लाम, इसमें यह इजाजत नहीं है कि माशरे को या सोसाइटी को या समाज को या कम्युनिटी को छोड़ के चले जाओ। हो सकता है ईसाइयत में यह परमिशन हो, यहूदियत में यह परमिशन हो, हिंदू मजहब में यह इजाजत हो, बुद्ध मजहब में यह इजाजत हो कि शहर को छोड़ के जंगल में जाओ, दरख्त के नीचे, पहाड़ की चोटी पर, हिमालय के गार में, किसी जजीरे में। लेकिन इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। रहना तुम्हें लोगों के बीच में, और जब रहना है तो उसका उसूल याद रखो कि तआवनु अलल बिर्र व तक्वा। जब कभी नेकी और तकवे के काम की बात आएगी तो मैं आगे बढ़ के उनका साथ देना है, उनकी हेल्प करना है, उनको असिस्ट करना है, उनके साथ कोऑपरेशन करना। लेकिन रहोगे इंसानों के बीच में ना, तो वहां पे आप गुनाहगार भी होंगे। वला तआवनु अलल इस्म वल उदवान। और जहां कहीं गुनाह की बात आएगी और अल्लाह की नाफरमानी की बात आएगी तो खबरदार उनके साथ तआवुन न करना। बल्कि बाद रिवायतों में एक जुमला आया है, इरादा है कि अगर सेहत रही, तौफीक रही और अय्याम अदा का पहला अशरा इसी अलसर इस्लामिक सेंटर में मैंने पढ़ा तो इसी जुमले को बहुत तफसील के साथ बयान करूंगा। लेकिन मुख्तसर कि बाद रिवायतों में यहां तक आया, ये जो कुरान का उसूल है ना कि खबरदार नेकी के और खबरदार गुनाह के और अल्लाह की नाफरमानी के काम में एक दूसरे का साथ नहीं देना, तो ये जो एक उसूल आया है, एक बहुत ज्यादा हमारे यहां मेलबर्न में एक मौजू पे गुफ्तगु की जा रही है, उसका भी एक खास एक बैकग्राउंड है। खुश अखलाकी, खुश अखलाकी, खुश अखलाकी। तो रिवायतों में है कि गुनाहगार को देखकर अगर कोई मुस्कुरा देता है तो ये अल्लाह की निगाह में खुद ये मुस्कुराहट गुनाह में शामिल समझी जाती है, ये आदमी गुनाहगार का साथी माना जाएगा और बद अखलाकी वाजिब है। लेकिन ये एक अलग मौजू है, जैसा मैंने कहा तफसील बाद में आएगी। तो किसी किस्म का तुम्हारी तरफ से तआवुन या कोऑपरेशन नहीं होना चाहिए गुनाह के काम में। खाली तुम्हारा मुस्कुरा देना बाद औकात तआवुन माना जाएगा। वत्तकुल्लाह, और देखो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, ये तो हुआ आयत का तर्जमा। अब इससे पहले कि मैं गुज़श्ता चार तकारीर को जहन में रख के आज की बात आगे बढ़ाऊं, एक डर मुझे महसूस हो रहा कि ऐसा ना हो कि ये टॉपिक कितना लंबा हो जाए कि जो खास आज की रात है उस हवाले से मैं ज्यादा बात ना कर सकूं। तो शुरू में कुछ इब्तदाई बातें बच्चों के लिए, कुछ नौजवानों के लिए, और उसके बाद फिर मैं इसी आयत को आगे बढ़ाऊंगा। और वो जो इब्तदाई बातें उनका ताल्लुक हमारे पांचवें इमाम की लाइफ हिस्ट्री से। हर एक को मालूम है कि पांचवें इमाम का असल नाम मोहम्मद है, और जैसा कि मैंने पिछली तकरीर में भी कहा था कि नवें इमाम का नाम भी मोहम्मद है, और ये दो मोहम्मद बीच वाले मोहम्मद। मैं इशारा कर रहा हूं उस हदीस की जानिब के अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद। बीच के जो दो मोहम्मद हैं उनमें एक पांचवें इमाम है, एक नवें इमाम। तो नाम है मोहम्मद, कुन्नियत है अबू जाफर, और जैसा कि पिछली तकरीर में अर्ज किया था कि यही कुन्नियत नवें इमाम की भी। फर्क करने के लिए नवें इमाम को कहा जाता है अबू जाफर सानी, सेकेंड अबू जाफर। लेकिन कभी ये नहीं भी कहा जाता तो हदीसों में बाज़ औक़ात ये इख्तलाफ हो जाता है कि ये हदीस नवे की है कि पांचवें की है। और इससे भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं जो आज बयान करने का मौका नहीं। कुनियत है अबू जाफर, नाम है मोहम्मद, और पांचवें इमाम है सातवें मासूम है। मैं 20 साल से तो मेलबर्न में, और इससे पहले 20 साल कराची में, बस एक नुक्ते वाला जुमला ये अर्ज करता हूं कि पांचवें इमाम है इमामत में ये फिफ्थ, 14 मासूमीन में ये सेवेंथ। इसको अगर आप लिख लीजिए एक साथ तो जो फिगर बनेगा 5 और 7 57, ये 57 पांचवें इमाम की विलादत का साल है, और यही इमाम की एज है। 57 में पैदा हुए और 57 ही इमाम की एज, 5 और 7 का कॉम्बिनेशन। और फिर अगर इन दोनों को मिलाए, 57 में पैदा हुए हैं और 57 एज है, तो इसमें 57 ऐड करें तो 114 हिजरा बनेगा, ये इमाम का वफात का साल है शहादत का, 114 हिजरा में इमाम शहीद हुए, और डेट यही थी जो आज रात है मेलबर्न के कैलेंडर से, यानी 7th of Zilhij। पांचवें इमाम की विलादत भी मदीने की है, शहादत भी मदीने की है, दफन भी जन्नतुल बकी में, यानी मदीने के कब्रिस्तान में। और पांचवें इमाम करबला के वाकये के आई विटनेस है, फिजिकल वहां मौजूद थे। करबला के अंदर इमाम 4 साल के थे, लेकिन तमाम मसाइब करबला में अव्वल 28 रजब से लेके, करबला से लेके, कूफे से लेके, शाम से लेके मदीने आने तक। और इमाम के 3 टाइटल बहुत मशहूर है, लेकिन ये 3 टाइटल बयान करने से पहले, जो अभी मैंने एक बात कही कि इमाम की शहादत की आज मजलिस है और आज मेलबर्न में शब है, नाइट ऑफ यानी इव ऑफ 7 ज़िलहिज, 7 ज़िलहिज 114 हिजरा, हमारे 5वें इमाम और 7वें मासूम की शहादत की तारीख है। 7वें इमाम के 5वें इमाम के हवाले से, शहादत के हवाले से भी एक अजीब बात हमारे सामने आती। जितने भी मासूमीन हमारे पास वाज़े हदीस मौजूद, जिसमें हमें बताया गया कि हर मासूम को शहीद किया गया, रसूलुल्लाह से लेके 11th इमाम तक 13 के 13 मासूम शहीद हुए, और बल्कि रिवायतों में है कि 14वें मासूम यानी इमाम जमाना भी शहीद किए जाएंगे। अय्याम अदा का पहला अशरा इमाम जमाना और विलायत अली के उनवान पे मुझे पढ़ना है, उसमें इसकी तफसील भी आएगी। सबकी शहादतें, लेकिन 5वें इमाम की शहादत में 2 बातें बहुत अजीब है। अजीब का मतलब यह कि बाकी पूरे मासूमीन से हटकर 2 बात। पहली बात, 5वें इमाम को जिस तरीके से शहीद किया गया वो बिल्कुल एक अलग तरीका था, जो किसी और इमाम मासूम की शहादत में हमें नजर नहीं आए। उसको मैं बयान भी नहीं करना चाहता हूं। बाज जगह पे ऐसा लगता है कि कहीं इमाम की तौहीन ना हो जाए, बस ये लफ्ज कह रहा हूं। 5वें इमाम की शहादत बिल्कुल अलग तरीके से हुई, न तलवार से, न अंगूर से, न शरबत से, न उस तरह के जहर से, बिल्कुल एक अजीब तरीका है। किसी हद तक 7वें इमाम के लिए भी ये कहा जा सकता है, लेकिन 5वें इमाम खास तौर पर। और दूसरी बात यह कि 5वें इमाम इज द ओनली इमाम, या 5वां इमाम इज द ओनली मासूम जिनके शहीद करने में फैमिली मेंबर का बहुत बड़ा दखल था। अब यह भी मैं खुल के नहीं कहना चाहता, बास चीजें ऐसी कि तो इनकी हदूद में दाखिल हो जाती हैं। बाकी तमाम मासूमीन, ये तो आपको मिलेगा कि बीवियों ने जहर दिया, चाहे वो रसूलुल्लाह से हम शुरू करें और 11वें इमाम तक पहुंचे। 9वें इमाम का तो पिछले ही तकरीर में तस्किरा हुआ, लेकिन बीवी फैमिली मेंबर में नहीं आती है। चनाचे हमारे यहां तो अहले बैत के हवाले से जब बात होती है तो हम बात करते हैं कि फैमिली मेंबर मीन ब्लड रिलेटिव। 5वां इमाम ओनली मासूम है, 14 मासूमीन में ओनली मासूम है जिनकी शहादत का अमल उनके ब्लड रिलेटिव के जरिए से हुआ। अब वो क्या चीज है, वो एक बिल्कुल एक अलग वाकया। यहां पे मैं ये अर्ज कर दूं कि जो अभी मैंने कहा ये वो कहा जो आम शिया उलमा में मशहूर, जिनकी मैं तकलीद में बाकी हूं आयतुल्लाह सीसानी के फतवे से, यानी मरहूम आगा कोई वो इसको नहीं मानते। वो उस रिवायत पे बहुत शदीद एतराज करते हैं, जिस रिवायत को अल्लामा मजलिसी से लेके शेख मुफीद तक ने और उनसे लेकर शेख सदूक तक ने बगैर एतराज के नकल कर दिया। तो एक बहुत लंबा ये आर्गुमेंट का मौजू हो जाएगा, जिसका मेरे पास टाइम नहीं। तो जो बात मैं अभी कह रहा हूं, मेरा अपने मर्जी इस बात को नहीं मानता, इसलिए मैं भी नहीं मानता, लेकिन मशहूर यही। और अल्लामा मजलिसी की बहारुल अनवार की इस वॉल्यूम का उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, जो 5वें इमाम के हालात पर है। बहुत डिटेल से ये रिवायत उसके अंदर मौजूद कि किस तरह शहीद किया गया, शहादत का तरीका भी और कातिल का नाम भी। अच्छा, अब ये बात यहां पे मैं रोकते हुए एक आखिरी बात इसमें अर्ज कर दूं, फिर इमाम का लकब और जो मेरा असल सब्जेक्ट चल रहा था चार तकारीर वाला। आइमा मासूमीन के हवाले से दो चीजें और काबिले तवज्जो हैं, जिनमें से एक का तस्करा इमाम जमाना के अशरे में आएगा, वो यह है कि आइमा ताहिरीन की माओं का ताल्लुक दुनिया के अलग अलग इलाकों से, और इसमें एक बहुत अहम मैसेज, वो बाद में तफसील आई। तो जो बात यहां पे पांचवें इमाम के हवाले से कहूं वो ये कि हमारे यहां आम आदमियों में जो एक बात मशहूर है, कोई गलत बात नहीं है लेकिन जो कह रहा हूं मशहूर, नजीबुत तरफैन सैयद, तमाम मासूमी 14 मासूम है 14, उनमें यह लफ्ज अगर किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो सिर्फ पांचवें इमाम। मैं तौहीन की नियत नहीं कर रहा कि दूसरे मासूमीन की तौहीन करूं, लेकिन नजीबुत तरफैन सैयद का जो हमारे यहां कंसेप्ट है कि बाप भी सैयद हो और मां भी सैदानी, पूरे 14 मासूमीन में से बाप तो हर एक सैयद माने, वो एक अलग बात है कि रसूल खुदा सैयद है कि वो सैयदों के बाप है वो अलग चीज, लेकिन बाप और मां दोनों सैयद, पूरे 12 इमाम 14 मासूमी, सिर्फ पांचवें इमाम ऐसे ना उनसे पहले ना उनके बाद, और कोई आपको इमाम मासूम ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? अल्लाह की मसलहत ये थी कि इमाम की माओ का ताल्लुक अलग इलाकों से बने। ये मसलहत वैसे तो मैं बहुत जगह पे पढ़ चुका हूं, लेकिन मेलबर्न में पहली दफा, इंशाल्लाह जिंदा रहा तो तौफीक रही तो इस अशरे में पढ़ूंगा जो अब आने वाला है मुश्किल से 3 वीक के बाद। तो खुलासा यह है कि पांचवें इमाम वाहिद इमाम है, बाप भी सैयद और मां भी सैदानी, या वाहिद मासूम है बाप और मां दोनों हवालों से, इनके बाद भी कोई ऐसा नहीं। पांचवें इमाम के वालिद तो चौथे इमाम है, वालिदा इनकी इमाम हसन की बेटी। तो दो तरीके से, यानी पांचवें इमाम के दादा हैं इमाम हुसैन और पांचवें इमाम के नाना हैं इमाम हसन, हसन और हुसैन का कॉम्बिनेशन आके जमा हुआ है हमारे पांचवें इमाम। दूसरे अल्फाज में आका हुसैन अपने बेटे चौथे इमाम की शादी अपनी सगी भतीजी से की थी, और इसीलिए लफ्ज है हाशिमियुन मिन हाशमियैन व अलवियुन मिन अलवियैन व फातिमियुन मिन फातिमियैन, ये पांचवें इमाम के बारे में तारीखों में लिखा। ये ऐसे हाशमी थे जिनके बाप और मां दोनों बनी हाशिम थे, ये ऐसे अलवी थे यानी अली की औलाद में कि जिनके बाप और मां दोनों औलादे अली, और ये ऐसे फातिमी हैं जिनके बाप और मां दोनों औलादे फातिमा में। गर्जे यहां पर बाद लोगों को धोखा हो गए कि शायद ये पहली शख्सियत हैं कि जिनके बाप और मां दोनों औलादे फातिमा में, नहीं, ये इमामों में से वाहिद हैं, लेकिन इनसे पहले हसन मुसन्ना के बेटे भी उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बात बहुत फैल जाएगी और असल मौजू शुरू नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये याद रखिए, जो हमारे यहाँ कभी कहा जाता कि फला आदमी नजीब उत्तरफैन सैयद है यानी बाप और मां दोनों औलाद फातिमा, वो 12 मासूमीन 12 इमामों में सिर्फ पांचवें इमाम। और आखिरी बात इस हवाले से, फिर मैं इमाम के लकब पे जाता हूं और वहीं से मेरा असल मौजू आगे बढ़ेगा। आखिरी बात यह कि ये दो बातें मैंने कही थी कि जरा सा आम मौजू से हटके करना है कि एक तो माओ का ताल्लुक खाली पांचवें नहीं, पूरे के पूरे 14 मासूमीन की माएं अलग अलग इलाकों की, और दूसरी बात यह है कि खुद ये जो 12 इमाम है ये 14 मासूमीन सब एक नूर के टुकड़े, लेकिन परवरदिगार ने इस दुनिया में जो इनको जिस्म अता किए हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि जैसे ट्विंस होते हैं किसी खानदान में कि दो भाई हैं तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, या अगर ट्विंस ना भी हो तो एक बाप की चार औलादें बिल्कुल एक जैसी लगती। जो लफ्ज मैं कहना चाह रहा था वो मैं कहते कहते रुक गया, मुझे बदतमीजी वाला लगा कि जैसे फैक्ट्री की प्रोडक्ट एक जैसी होती है, 14 मासूमीन सब एक नूर, लेकिन शक्ल और सूरत के एतबार से परवरदिगार ने एक दूसरे से मुख्तलिफ पैदा किया। क्योंकि पिछली तकरीर में ये बात आई थी और आज फिर आ रही, वजह क्या? वजह ये, यानी ये बात रिपीट करने की वजह यह है कि बाज रिवायतों में, जो बहुत ही जईफ रिवायतें, लोगों को धोखा हो जाता है कि मोमिन को उसकी फिजिकल अपीयरेंस के जरिए से पहचाना जाए कि जी ये मोमिन है। मसलन मौला की कुछ हदीसें हैं कि भाई हमारा चाहने वाले का पेट पीठ से मिला होता, तो अब ये इसका असल मैसेज कुछ और, हमारे यहां कुछ और समझा जाता। मैं कराची के जिस महल्ले में तकरीबन जिंदगी मैंने गुजारी उसका नाम है रिजविया सोसाइटी। मेरी जिंदगी का ज्यादा बड़ा हिस्सा कराची में गुजरा, अगर जो कई इलाकों से मेरा ताल्लुक है, शायद पिछली दफा ये बात हुई थी, फजूल बात ना होने पाए जल्दी शॉर्ट करता हूं। और कराची में भी मेरी जिंदगी का तकरीबन सारा हिस्सा एक ही इलाके में गुजरा, रिजविया सोसाइटी। और एक तवील अरसे तक 40-50 साल तक, पाकिस्तान बनने से लेके 40-50 साल तक कराची में मैयत को गुस्ल देने के सिर्फ दो गुस्ल खाने थे। एक खारादर में था जो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद का था, यानी उससे पहले से था, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो पहले एक ही गुस्ल खाना, फिर रिजविया सोसाइटी। तो रिजविया सोसाइटी में चूंकि पूरे शहर को कवर करने वाला दो ही गुस्ल खाने थे जिनमें से एक रिजविया था, बहुत मैयतें आती थी। और जोहरैन की नमाज के बाद तो मुझे याद नहीं पड़ता कोई भी जोहरैन की नमाज ऐसी हो कि उसके बाद एक ना एक नमाज जनाजा ना हो। नमाज जनाजा होती है, उसके बाद मैयत को उठा के थोड़ी दूर चलते हैं, बस में ले जाके रखते हैं। अब मैं बहुत छोटा, मैं तो अपने बचपने की बात कर रहा हूं, अक्सर जो लोगों के कॉमेंट सुना करता था उससे ये चीज और वाजे हो। लोग क्या फैसला करते थे, भाई फला साहब जन्नती, कैसे भाई आपको पता जन्नती है कि जन्नती नहीं है कि जानने वाले हैं, और कहा नहीं हम तो नमाज पढ़ने आए थे, पता चला आज मैयत हमने कंधा दे दी, शक्ल तक नहीं देखी कौन है, तो कैसे कह दिया जन्नती का, जनाजा इनका बहुत हल्का था। और फला साहब जहन्नमी थे, अरे इतना भारी जनाजा था, कंधे टूट गए, दो दिन मालिश कराना पड़ी। अब ये फैसला हो रहा है जन्नती और जहन्नमी का इस बात पर कि जी उनका जनाजा बहुत हल्का, यानी बहुत दुबले पतले से थे तो वो जन्नती हो गए, और ये जरा मोटे ताजे लहीम शहीम इनका वजन ज्यादा था तो ये जहन्नमी हो गए। मैं अपने बचपने में एक बार नहीं, तकरीबन हर नमाज दौर के बाद ये कॉमेंट सुनता रहता था। तो अब ये तो एक जरा सी थोड़ी सी मजाक वाली बात बन गई, या ये जुमला जो मैंने कहा ये मजाक नहीं था, ये सुना मैंने। आइम्मा मासूमीन में आपको मिलेगा कि हाइट के एतबार से डिफरेंट हाइट्स है, ये नहीं है कि सारे इमाम जो है सबकी हाइट एक होती। इसी तरीके से कलर, स्किन कलर, बल्कि नवे इमाम के हवाले से तो ये है कि उनकी स्किन का कलर बाकी मासूमीन के मुकाबले में जरा सा कम था, तब वो प्रॉब्लम पैदा हुआ कि चचा और फूफी ने भी इंकार कर दिया कि ये हमारा फैमिली मेंबर नहीं, तो मत नहीं लगाई कोई, कुछ और बात जो पिछली दफा आ चुकी। तो हाइट, स्किन कलर एंड जिस्म वेट के एतबार से बहुत दुबले हैं कि बहुत यानी भारी जिस्म है। मासूमीन का तरीका अलग अलग, ताकि हर किस्म का मोमिन जो है ना वो इस खाली फिजिकल अपीयरेंस से हम किसी को मोमिन ना समझे। चुनाचे बाद रिवायतों में फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं है, लेकिन एक और हवाले से कि किसी की नमाज और रोजे से धोखा ना खाओ, क्योंकि नजर आने वाली चीज है ना कि आदमी नमाज पढ़ता है, ये रोजा रखता है, नहीं उससे मामला करके डीलिंग करके देखो, तब अंदर की चीज सामने आती है, या उसके साथ ट्रेवलिंग करके देखो। तो पांचवें इमाम, बाकी इमामों के मुकाबले में ये मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि रिवायतों में पांचवें इमाम के हालात में इसको बहुत हाईलाइट किया गया, पांचवें इमाम का जिस्म बहुत भारी था। अब कुछ बुजुर्गों के लिए, जिन लोगों ने शहीद बाकर सदर को देखा, सदर खानदान के कई आदमी शहीद हुए सद्दाम के हाथों, लेकिन जो सबसे पहले थे, जिनको आज भी इराक में सदर कबीर कहा जाता, जिनकी बहन आमिना बिनतुल हुदा, इसलिए ज्यादा मशहूर वाकया हो गए। मसलन उनका जिस्म बहुत भारी था, या मरूम आगा खुई का जिस्म जिंदगी के आखिरी सालों, लेकिन अगर आप देखें तो आयतुल्ला सिस्तानी है या इमाम खुमैनी है, जिस्म बहुत हल्का फुल्का। तो ये चीजें मोमिन की पहचान नहीं होती हैं। तो पांचवें इमाम का जिस्म इतना भारी था कि तीन छोटे से जुमले, बहुत छोटे से जुमले। पहला यह है कि जब इमाम की शहादत का वक्त करीब आया, यानी जहर दे दिया गया, जहर के बाद तीन दिन के बाद इमाम शहीद हुए, जहर का असर पूरे जिस्म में, तो इमाम ने अपने बेटे छठे इमाम को बुलाया और बुलाने के बाद जो वसीयत की उसमें खास एक लफ्ज है, वसीयत क्या की कि बेटा मुझे कफन जब पहनाना तो उस चादर में पहनाना जिससे मैंने हज किया। ये एक मसला हमारे यहां मशहूर है और फिकी मसला भी है कि एहराम की चादर अगर आदमी अपने कफन में शामिल कर ले तो क्या कहना उस कफन का। यह पांचवें इमाम की खास वसीयत कि उस चादर में मुझे कफन पहनाना जो मैंने जिसमें मैंने हज किया है, जो एहराम में इस्तेमाल हुआ। एहराम हज का एक हिस्सा। ये याद दिला दूं कि तकरीबन 40 साल या इससे ज्यादा मैंने पांचवें इमाम की शहादत के मजलिस मक्का मुकर्रमा में उस रात को पढ़ी है जिसके अगले दिन हम लोग हज के लिए निकलते हैं। ये इस वक्त पीक मजमा होता है। पूछिए आप किसी आदमी से जो मक्के में रहा हो, जद्दे में रहा हो, कि सात ज़िलहिज है, शबे सात ज़िलहिज, आठ ज़िलहिज से मुसलमान मक्का छोड़ के मिना अराफात जाने लगते हैं। तो ये मजलिस मैंने 40 साल या इससे ज्यादा मक्के में पढ़ी, तो काफी हज की बातें इसमें आती थी पांचवें इमाम के हवाले से। और आइम्मा ताहिरीन में शायद सबसे ज्यादा हज के हवाले से हदीसें पांचवें इमाम ही की हैं हमारे पास। आज ही मैं बयान करने लगूं तो पूरा वक्त गुजर जाएगा और 40 साल का वो मैटर सीने में जमा है, लेकिन मुख्तसर एक तो यही हदीस थी कि बेटा जिसमें मैंने मुसलसल हज किया उसमें मुझे कफन देना। और फिर अगला जुमला बड़ा अहम है, और मेरी लहद न बनाना। मुर्दे को दफन करने के दो तरीके हैं, एक को कब्र कहते हैं, एक को लहद कहते हैं। हमारे इंडिया पाकिस्तान में कब्र ही इस्तेमाल होता है लफ्ज, लेकिन एक लहद है। कब्र है कि सीधा सीधा आपने जमीन में खोदा कब्र को और दफन किया मुर्दे को, और लहद यह है कि नहीं, आपने गढ़ा खोदा उसके बाद उसकी साइड की दीवारों में जगह बनाई मुर्दे को दफन करने की। पांचवें इमाम का जुमला, और वो ये है कि बेटा मेरी लहज न बनाना। मैं ये जुमला शायद आम हालात में ना कहता, लेकिन एक वसीयत, मेरा जिस्म बहुत भारी है तो मुझे लहज में ले जाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए सीधा मुझे कब्र में उतारना। अब अंदाजा कर सकते हैं आप कि ये मसला उस वक्त के एतबार से कितना बड़ा मसला था, देखने वाले भी बहुत परेशान थे। तो ये तो था इमाम का शहादत के मौके पे कहना, यानी 57 की एज थी जब इमाम ने यह कहा। लेकिन जवानी में भी इमाम जब चलते थे तो दो गुलाम इमाम को सहारा दे के चलते थे। मैं इससे ज्यादा कहना नहीं चाहता, मुझे तौहीन इमाम का पहलू लग रहा, लेकिन चूंकि मुझे बताना यह था कि अल्लाह ने फिजिकल अपीयरेंस को ईमान और कुफर का दारोमदार नहीं बनाया। और वो मशहूर रिवायत जिसमें उलमा ने एक जुमला लिखा, उलमा को तो लोग आजकल अहमियत ही नहीं देते हैं, मासूमीन के असहाब ने, पांचवें इमाम के सहाबी है जुरारा, उन्होंने कहा जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार पांचवें इमाम को एक जुमला कहते सुना कि सामने से एक आदमी ने एक सवाल किया और इमाम ने कहा तू झूठा। ये बहुत स्ट्रांग लफ्ज हो जाता है मासूम के लिए, तू झूठ बोल रहा और तेरा उस्ताद भी झूठा है। अब वो जिस वक्त इमाम ये जुमला कह रहे थे खाने काबा के सहन में बैठे थे। अब जरा कोई मुझसे पूछे, या मसलन हमारे शायर अहले बैत अदनान कलीम मियां से जिनकी जिंदगी का एक हिस्सा जद्दा में गुजरा, इन तारीखों में कितना याद आता है मक्का और काबे का सहन। इस वक्त जो मजमा होता है ना पूरे हज में, पीक मजमा आज होता है शबे सात, कि कल से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, कुछ मिना जा रहे हैं, कुछ अराफात जा रहे हैं, पीक मजमा होता। इमाम सहन में बैठे हैं, बाकायदा तारीख में तफसील कि अपना जिस्म भारी होने की बिना पर इमाम आम तरीके से बैठ नहीं सकते थे, खास स्टाइल से बैठे थे। उसे समझाने जाऊंगा तो वक्त भी ज्यादा लगेगा, जरा तोहीन भी हो जाएगी। तो ये तीन जुमले, जब अपने दफन की वसीयत की वही जुमला कहा कि मेरा जिस्म बहुत भारी, तो लहद जो मासूमीन का तरीका कार है वो नहीं, कब्र मेरी कब्र बनाना। नंबर दो, जब जवानी में चलते थे तब भी इतना मुश्किल होता था चलना कि दो गुलाम सहारा देते। और नंबर तीन, जब खाने काबा की सहन में बैठे तो जिस्म भारी होने की बिना पे खास अंदाज से बैठना पड़ता था। और वो जो रिवायत है वो अभी आती है झूठे और सच्चे वाली। तो ये तो इमाम के जिंदगी के कुछ अलग अलग मुतफर्रिक बातें थी। अब इसकी आखिरी बात अर्ज करके आज के मौजू पर आ जाए। और वो आखिरी बात यह है कि इमाम का नाम हो गया, इमाम की कुनियत हो गई, इमाम की फिजिकल अपीयरेंस हो गई, इमाम के बाप और माँ का इंट्रोडक्शन हो गया, इमाम की विलादत की बात हो गई, इमाम की शहादत का साल हो गया, इमाम की शहादत की वसीयतें हो गई। तो एक आखिरी बात और, इमाम के टाइटल्स अलकाब, तीन लकब इमाम के तारीख में आए, बाकिर, शाकिर, हादी। ये तीन लकब इमाम के तारीखों में है कि पांचवें इमाम के तीन टाइटल्स हैं, जिनमें सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बाकिर। अच्छा, बाकिर की भी दो वजह बताई गई। बाकिर के हवाले से पहली बात तो ये, अब जो जुमला मैं कह रहा हूं, ये इस आयत पे जो मैंने अब तक तीन मजलिसें पढ़ी, आज चौथी पढ़ रहा हूं, जो पहली मजलिस थी छठे इमाम, उसमें एक जुमला मैंने कहा था कि छठे इमाम का लकब सादिक रसूलुल्लाह ने दिया था, ये कहकर कि दो जाफर मेरे नस्ल में इस तरह पैदा होंगे, एक झूठा होगा एक सच्चा होगा। वो रिवायत दोहराने का वक्त नहीं है, आधे घंटा गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। बाकिर लकब भी वो लकब है जो रसूलुल्लाह ने पांचवें इमाम को दिया। हदीस हर एक को याद है, मैं कोई पुरानी बात इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से कहा था कि मेरा वो बेटा होगा और उसका लकब बाकिर होगा, वो बाकिर होगा। तो बाकिर लकब वो रसूलुल्लाह ने पांचवें इमाम को अता किया है, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी की मशहूर रिवायत के जरिए से। मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि हर एक को मालूम। बाकिर के लफ्जी माने हैं किसी चीज को फैलाना, किसी चीज को फैलाना, या ये कहिए कि किसी चीज को खोल के तोड़ के फिर फैलाना। बाकिर, बकरा या कुरो बाब नसरा यंसुरो से है बकरा। अब दो वजूहात इसकी हमारे पास तारीख में नुमाया लिखी, भाई असल चीज तो है कि रसूलुल्लाह ने यह लकब अपने बेटे को अता किया बाकिर, लेकिन एक तो वजह अरे को पता है क्यों, ये भी खुद पैगंबर के अल्फाज में है कि वो बाकिर है क्योंकि या कुरुल इल्मा, वो इल्म को फैलाएगा, यानी समझो जिस तरह दाना बंद होता है, इल्म बंद होगा फिर दाना टूटता है, खुलता है और उसमें से पौधा निकलता है, इस तरह से मेरा बेटा इल्म को खोलकर सारी दुनिया में इल्म फैलाएगा। तो बाकिर अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन व आखिरीन में जितना इल्म ये फैला रहा है किसी और ने नहीं फैलाया होगा, इल्म की वजह से बाकिर कहा गया। और ये तमाम आलम इस्लाम का इत्तेफाक है कि औलाद फातिमा इल्म तफसीर, इल्म कलाम और इल्म हलाल व हराम और इल्म शरीयत जितना पांचवें इमाम ने फैलाया किसी ने नहीं फैलाया। और इसकी बहुत अभी कुछ बातें आने वाली हैं, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन बाकिर की एक और वजह है, दो वजूहत है बाकिर की, ये दो का जो इन दोनों को मिला दीजिए मोमिन बनता। मोमिन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमिन, ये दो को मिलाइए, इल्म, दूसरी बात। बाकिर इसलिए भी कहते हैं कि यब कुरो जिबहतहु बिसुजूद या बेकसरती सुजूद, मेरा पांचवा इमाम इतने सिजदे करता था, इतने सिजदे करता था, इतने सिजदे करता था कि सिजदों की कसरत की वजह से इमाम की पेशानी फैल गई थी, और इमाम की पेशानी जो खाल थी जगह जगह से फट जाती थी सिजदों की कसरत की वजह से। अब क्योंकि बहुत ज्यादा सजदा करने वाले को सज्जाद कहते हैं, वो लकब इनके बाबा को मिल चुका, तो बाकिर, बाकिर यानी सजदे इतनी कसरत से किए कि पेशानी, ये फोरहेड, ये फैल भी गई और साथ साथ ये जगह जगह से ये फट जाती थी। फिर उसको परवरदिगार का निजाम है हर इंसान के जिस्म में, इतने सजदे करते थे। यानी दो चीजें हुई, इल्म और इबादत, पांचवें इमाम की इबादत कम पढ़ी जाती है। और यहां पर मैं उस जुमले को फिर आपके सामने पेश कर दूं ताकि बात वाज़े, आदमी का जिस्म जितना हैवी होगा उतना उसके लिए नमाज पढ़ना मुश्किल होगा। बिठाकर कहिए कि चार घंटे दुआ पढ़ो, वो इतना मुश्किल नहीं है, रोजा भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन नमाज जो फिजिकल इबादत है वो जितना ज्यादा जितना हैवी होता जाएगा, आप खुद देखते हैं बुढ़ापे के अंदर बैठ के नमाज, लेट के नमाज, किसी के नी में प्रॉब्लम, कोई कुर्सी में बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब होता। लेकिन इस कसरत के साथ पांचवा इमाम सिजदे करता है और इबादत करता है, इस कसरत के साथ कि एक तो लकब टाइटल बाकिर बना सिजदों की वजह से, और एक और छोटी सी बात, और दूसरा अगर कभी किसी आदमी को वो दुआ मांगना, हमारे यहां ये दुआएं कोई भी मांगता है, जब किसी से कहा जाए भाई आज बहुत अहम रात है दुआ मांगी, अब जैसे दो रातें बाद, आज सैटरडे है इस वक्त रात का वक्त है मेलबर्न, दो रातें बाद मंडे की रात का वक्त शबे अराफा शबे कदर के बराबर है दुआ के एतबार से, बहुत अहम रात है, अमाल मुख्तसर है उसके, हाँ डे ऑफ अराफात के अमाल ज्यादा है, वो ऐलान आपके पास आ जाएगा, शबे अराफा बहुत मुख्तसर अमाल है आधे घंटे के, लेकिन जब कहा जाए कि अब दुआ मांगी, क्या दुआएं लोग मांगेंगे, जो मांगेंगे वो सही है गलत नहीं, रोजी रिस्क की दुआ, शादी की दुआ, औलाद की दुआ, तालीम की दुआ, इमिग्रेशन की दुआ, ये सारी दुआएं मांगेंगे ना, मगर बाकायदा ये तारीख ये रिवायत में आया पांचवा इमाम, पिछली तकरीर से मैं इसको रब्त मिला रहा हूं, पता नहीं कितने लोगों ने पिछली तकरीर सुनी और पता नहीं कितने लोगों को याद हो, वो डे मीन्स फ्रॉम डॉन टू सनसेट, जो दिन का टाइम होता है डे लाइट वाला, उसको हर इमाम के लिए उसमें एक एक वक्त दिया गया, जैसे ही नमाज जोहर का वक्त आ जाता है अव्वले वक्त नून, उसके बाद सिर्फ चार रकत नमाज का जो टाइम हो, कितनी देर में आप पढ़ते हैं चार रकत नमाज, दो मिनट, ढाई मिनट, तीन मिनट, चार मिनट, ये पांचवें इमाम का वक्त, और ये खास हाजत तलब करना है पांचवें इमाम के वसीले से, औलाद की नहीं, रिस्क की नहीं, शादी की नहीं, वो नवे इमाम के हवाले से कुछ चीजें बता चुका, पांचवा इमाम के हवाले से जो हाजत मंगाई गई है वो इबादतों की हाजत, कि अगर कोई आदमी का दिल इबादत का चाह रहा है दिल नहीं लगता, उसका दिल चाहता है वो नमाजी बने नमाजें कजा हो रही, दिल चाहता है रोजे रखे रोजे छूट रहे, दिल चाहता है कि मसलन खुम्स दे और खुम्स नहीं दे पाता, इबादत ये खास पांचवें इमाम के नाम की खसूसियत, खुद भी पांचवा इमाम, इस कसरत के साथ सिजदे करता है नमाजें पढ़ता, और जो इमाम का टाइम है नून, उसके बाद चार रकत का जो टाइम होता है, एस्टिमेटेड टाइम पांच मिनट रख लीजिए, ये खास उन लोगों के लिए मुख्तसर अपने अल्फाज में ये हाजत पेश करने के लिए पांचवा इमाम। और यही पे एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, जरा समय बहुत थोड़ी देर के लिए मौजू से हट रहा हूं, और वह यह है कि कुरान करीम में दो जगह पर सूरह हदीद और सूरह तहरीम, ये दोनों बहुत अहम सूरे, कुरान का हर सूरह अहम है लेकिन हमारे करंट सिचुएशन बहुत अहम, ये दो सूरे दो जगहों पे कुरान ने कयामत के मैदान का एक तस्किरा करते हुए कहा, यौमा तरल मोमिनीना वल मोमिनात नूरुहुम यसअ मिन बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कि कयामत के दिन तुम मोमिनीन और मोमिनात को देखोगे। यूजुअली कुरान सिर्फ मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल करता है, मोमिनात उसमें खुद बखुद आ जाती, मगर ये इतना अहम मैसेज था अलग अलग करके का, तुम मोमिनीन और मोमिनात को देखोगे कयामत के दिन कि उनके आगे आगे उनका नूर चल रहा, जब वो कयामत के मैदान में आएंगे और जन्नत तक जाएंगे तो उनका नूर आगे चल रहा है, आगे नूर है और उसके पीछे पीछे ये लोग आ रहे हैं, और ऐसा कि फिर कुरान ने आगे इसके बाद कि फौरन आयत में कहा, वह यौम तरल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, और तुम मुनाफिकों को देखोगे, मर्द मुनाफिक औरत मुनाफिका, वो इन मोमिनों से कहेंगे उनजुरना जरा ठहर जाओ, इख्तबिस में नूर है ना, हमको इतनी मोहलत दे दो कि हम थोड़ा सा नूर तुमसे लेके अपने लिए आसानी पैदा करें, और मोमिन क्या कहेगा कि जाओ जिनको मानते थे नूर उन्हीं से लो, ये कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं, ये अपने खिताबत का स्टाइल नहीं बना रहा हूं, मोमिन और मोमिना कयामत के दिन इस तरह लाए जाएंगे कि वो चलेंगे नूरहुम यसा, सही वाजिबात हज में से एक वाजिब है, वाजिब क्योंकि अब हज की तारीखें हैं ना, मेरी जबान पे लफ्ज आ जाते हैं, हज में एक चीज सही होती है, सही माने चलना, तो नूर आगे आगे चलेगा। और सूरह तहरीम वही सूरह जिसके आखिर में दो नबियों की नाफरमान बीवियों का तस्किरा है और दो अच्छी औरतों का तस्किरा है, उसमें भी आयत आई, यौम ला यख्ज़िल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात, कयामत के दिन अल्लाह किसी मोमिन मर्द और मोमिना औरत की रुसवाई बर्दाश्त नहीं करेगा, इंसल्ट नहीं होगी, तौहीन नहीं होगी, और यस अनूरहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन अयमानिहिम, उनका नूर उनके आगे आगे चलेगा। कयामत के मैदान से जन्नत तक का रास्ता बहुत अंधेरा वाला रास्ता, अंधेरे वाला रास्ता, कयामत तो खूब रोशन चमकदार सूरज सर के ऊपर है लेकिन उसके बाद से जन्नत तक जाना, वो कुले सिरात की जो तफसील आप सुनते हैं उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए कि तलवार की धार और बाल से ज्यादा बारीक वो अपनी जगह, साथ साथ अंधेरा भी बहुत होगा। जब आप खुद देखिए, जब अंधेरा होता तो बड़े और वसी रास्ते पे चलना भी मुश्किल होता है, आदमी डरता है ठोकर ना खा, और अगर इतना छोटा रास्ता हो कि बाल से ज्यादा बारीक तलवार और अंधेरा हो वो एक और, ये अंधेरा, ये डार्कनेस, पुले सिरात का अंधेरा, ये और प्रॉब्लम करेगा। लेकिन कहा मोमिन मर्द और औरतें, दो जगह कुरान में सूरह हदीद सूरह नंबर 57, सूरह तहरीम सूरह नंबर 66, दोनों में है कि मोमिन का नूर आगे चलेगा। अब रिवायत पांचवें इमाम ही की, अभी तक तो इमाम के हालात बता रहा था, उनकी एक रिवायत कहा कि मोमिन का नूर, अब अंधेरा बिल्कुल अंधेरा, अंधेरे में आप क्या करते हैं, टॉर्च रोशन करते हैं, पुराना जमाना था टॉर्च का, आजकल लोग मोबाइल निकालते हैं मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, रोशनी चाहिए ना, और पुराने जमाने में जाइए अंधेरा है तो कैंडल या मोमबत्ती लेके चलते हैं, और जाइए तो चिराग लेके चलते हैं, लालटेन लेके चलते हैं, यही सब कुछ तो होता है ना। अब वो पूरे अंधेरे में आप जा रहे हैं पुले सिरात पर, और ऐसा कि बाल से ज्यादा बारी, जरा ठोकर खाई और नीचे गए, उस पर नूर चल रहा। मासूम फरमाते हैं, हमारे पांचवें इमाम फरमाते हैं, पता है ये नूर मोमिन को कहां से मिलेगा, ये नूर उसके आजाए सिजदा से निकलेगा। जो मोमिन जिंदगी में सिजदा करता चला रहा है उसके सातों आजा उस दिन नूर दे रहे होंगे, उसकी पेशानी, उसकी दोनों हथेलियां, उसके दोनों घुटने, उसके पांव के दोनों अंगूठे, इनका नूर होगा। ये नमाज का नूर है, ये सिजदे का नूर है, ये आजाए सिजदा का नूर है जो हमें पुले सिरात से लेके जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाएगा। ये पांचवें इमाम की हदीस, कौन पांचवा इमाम, ये हदीस कैसे मैंने पढ़ी कि खुद पांचवा इमाम इस कसरत से सिजदे कर रहा और इसका एक बेनिफिट बता रहा कि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये किसका, सिजदों का, नमाज का। एक बेनिफिट और सुन लीजिए पांचवा इमाम ही की जबान से, रावी ने एक मर्तबा कहा कि मौला आपके पास आता हूं और आप इस महफिल में बैठता हूं तो डर बहुत लगता, जब लोग हमसे आके कहते हैं ना कि मौलाना आप डराते बहुत है, तो अब तो लोग आते ही नहीं है लेकिन एक जमाने में आते थे, इसलिए आते थे कि मजबूरी थी, उस इलाके में सिर्फ मैं ही मजलिस पढ़ता था, जाए तो कहां जाए, डराते बहुत है आप मौलाना, तो जरा इत्मीनान होता है कि ये मैं नहीं है, तो पांचवा इमाम से कहा गया मौला आप डराते बहुत है, और किस तरह से डराते हैं वो दो तीन रिवायतें बाद में पढ़ूंगा, सिर्फ एक रिवायत उसूल काफी की सुन ले, उसूल काफी जिसके बारे में कहा गया कि शियत की सबसे मशहूर किताब उसूल काफी, क्या रिवायत, मा माना बरा तुम मिनन्ना, हमारा साथ देना किसी को जहन्नम से आजाद नहीं करवाएगा। ये ना हो कि तुमने नारा लगाया पांचवें इमाम के नाम का और समझे कि जहन्नम से आजाद हो गए, नहीं, हमारा साथ किसी को जहन्नम से आजाद नहीं करवाएगा। और बहुत सी रिवायतें इस वक्त में, आज तो मुझे हक है ना, जश्न की तकरीर में लोग कहते हैं मौलाना ये क्या जश्न आपने पढ़ दिए, आम आदमी नहीं कहते, मेंबर से ये कमेंट किए जाते हैं। खैर, तो खुलासा ये है कि पांचवा इमाम, अब डराते बहुत है, कभी कब्र, कभी अजाब, कभी जहन्नम, कभी पुले सिरात, डराते इसलिए नहीं है कि डराना, डराते इसलिए है कि इन चीजों से बचने का तरीका बताना है। कहा कि ये पुले सिरात इतना सख्त है, तरीका बताए, नमाज पढ़ो। अब हमारे आजकल जाकिरीन, बल्कि जाकिरीन तो जाकिरीन, जाकिर का मतलब है मर्द, जाकिरात खवातीन मजलिस पढ़ने वाली, उन हाथ उठा के नारा हैदरी करो, ये हाथ तुम्हारे जन्नत में चमकेंगे। ये उसूली एतबार से बात कर रहे हैं कि मोहब्बत अहले बैत में उठे, इसकी कोई इनके पास हदीस नहीं, लेकिन नमाज के अंदर जो तुम्हारी पेशानी चमकेगी हदीस है, क्योंकि इससे तुमने सिजदा किया, तुम्हारी हथेलियां चमकेगी क्योंकि तुम्हारी सिजदे में ही जमीन पे गई है, ये हदीस है, ये भी नूर है, इसको भी जरा याद दिलाइए। कहा कि मौला अब आप तो स्टार्ट ही यहां से लेते हैं, ये जब मलकुल मौत आएगा तो बहुत सख्त अजाब दे के रूह निकालेगा, वो अजाब नहीं देगा, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, आपका ऑपरेशन है, हाथ काटना, उसकी तकलीफ तो होगी, आजकल तो एनेस्थेसिया वगैरह आ गया, लेकिन तकलीफ तो होगी। मौला इस तकलीफ से बचने का कोई तरीका है, तो बहुत आसान, मलकुल मौत से दोस्ती कर लो, भाई दोस्ती कर लो, वही तो आएगा ना रूह निकालने के लिए, अगर तुम्हारी उससे दोस्ती है वो तो तुम्हारा दोस्त है ना, जितना अल्लाह ने उसे इजाजत दी उतना वो रियायत कर देगा। और रावी ने तो सर पकड़ लिया, मौला ये तो आपने पहले से मुश्किल मसला बता दिया, मलकुल मौत से तो जिंदगी में एक ही बार मुलाकात होती है, वही इतना सख्त वक्त होता है, दोस्ती कैसे करें। कहा नहीं, 40 दिन 40 दिन मुसलसल तमाम नमाजों का वल वक्त में पढ़ लो, इसलिए कि मलकुल मौत की दो ड्यूटियां, एक ड्यूटी है वो रूह निकालता, दूसरी ड्यूटी है कि वो हर नमाज के वक्त दुनिया भर के इंसानों को चेक करता रहता है और जो उसे मुसल्ले पे खड़ा नजर आए। और इस तरह के 40 दिन तो अव्वल वक्त में नमाज पढ़ी, चाहे बाद में कुछ डिले भी कर दे, मलकुल मौत को खुद ब खुद उससे मोहब्बत हो जाती है, मलकुल मौत की खुद ब खुद इससे दोस्ती हो जाती है, और जब उसके पास आता है तो उसकी रूह मलकुल मौत बहुत आराम से निकालता। ये सब पांचवा इमाम आसानियां बता रहा है, लेकिन किस तरह से कि पहले खुद इतनी नमाजें पढ़ी और इतने सिजदे किए कि लकब हो गया बाकिर। मगर ये दो बातें हुई ना, बाकिर क्यों, इल्म इतना कि सारी कायनात में सारी दुनिया में फैलाया, और इबादत ऐसी, इल्म और इबादत को मिला दे तो मोमिन बनता। मोमिन उसे कहते हैं जिसके पास ना इल्म की कमी है ना इबादत की, जो खाली नमाजें पढ़े जा रहे हैं मसाइल नहीं जानते हैं वो भी मोमिन नहीं, और जिनके पास मालूमात तो बहुत हैं लेकिन खौफे खुदा और इबादत नहीं है वो भी मोमिन नहीं। ये जुमला मैंने कहा, दूसरा वाला ये मैंने अपने जैसे लोगों को देख के कहा, मैं जानता हूं कितने ही मिंबर पर जाने वालों को ये मिंबर पर जाके उनके भाषण सुनिए तो आपको ऐसा लगे कि बस ये इमाम मासूम की बात है तो यही, और आम जिंदगी में उनकी कैफियत कुछ और। छोटी सी मिसाल देता हूं, नहीं इस वक्त मिसाल दूंगा तो वक्त कम है, बात बिगड़ जाएगी, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के या विक्टोरियन गवर्नमेंट के कानून के तहत ऑनलाइन मजलिस के लिए जितने लोग होना जरूरी उतने ही यहां पर है, उससे एक भी ज्यादा नहीं है बल्कि उससे एक कम ही है, लेकिन उसके अंदर हमारे मोहतरम शायर अदनान कलीम साहब भी, तो ये जुमला अर्ज कर दूं। पांचवें इमाम के जमाने के एक बहुत ही मशहूर शायर का नाम था कुमैत, कुमैत, और एक बार ये इमाम की खिदमत में पहुंचे और कहा कि मौला मैंने आपकी शान में और आपके खानदान की शान में कसीदा कहा है। इमाम ने कसीदा का सुनाओ सुन, बहुत खुश हुए इमाम, तीन बार हाथ उठाया, तीन बार हाथ गिराया, तीन बार हाथ उठाया, तीन बार हाथ गिराया, और तीनों बार क्या कहा, अय अल्लाह इसके लिए जन्नत को वाजिब कर दे, जन्नत की दुआ मांगी उसके लिए तीन बार, और उसके बाद गुलाम से कहा कि 1,00,000 दिरहम लाके इसको दे दो। चौथे इमाम के हालात में फरजदक का कसीदा आता, पांचवें इमाम के हालात में कुमैत का कसीदा आता। जब वो आए, जब वो गुलाम 1,00,000 दिरहम लेके आए, इमाम 1,00,000 दिरहम दे रहे, कुमैत लेने से इनकार कर दिया, कहा मौला नहीं, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और आखिरत के लिए कसीदा कहा है, मुझे दौलत दुनिया नहीं चाहिए, ये मैं किसी और तरीके से कमा लूंगा, ये जुमला था, किसी और तरीके से कमा लूंगा, मुझे तो आप अपना ये कुर्ता दे दे जो मेरी कब्र और कयामत में आसानी पैदा करेगा। ठीक है, अब ये इसका मफहूम क्या कुमैत ने का, रोजी कम पैसे कमाने के और बहुत सारे तरीके दुनिया में, अल्लाह ने हजारों चीजें पैदा की है, उनको बेच के रोजी कमाओ, खाली इल्म ही चीज नहीं है जिसे बेचा जाए, हम भी तकरीर कर, लेकिन आप आएंगे हमारे पास मौलाना, हमारे घर मजलिस से जनाब अली असगर के मसाइब पढ़ना, हमने कहा $400 रखी है यहाँ पे, और कभी अच्छा नहीं लगता तो हमने कहा नहीं हमारे सेक्रेटरी है उनसे बात कीजिए, वो तो कह सकते हैं ना $400, तो मिंबर पे कहना आसान है कि राज़िक अल्लाह है वो इसका इंतजाम करेगा, बंदे उससे तवक्को क्यों कर रहा, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो पहले रखो कैश डॉलर, उसके बाद आके कहो कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ अपने लिए कह रहा हूँ, लेकिन पांचवें इमाम ने बताया इल्म और इबादत दोनों होनी चाहिए, जो कह रहे हो, और इसीलिए पांचवें इमाम की एक बहुत ही मशहूर हदीस सुना दूं, आज अंदाज कुछ और, मैं सोचकर कुछ और आया था, मसलन मैं सोच के आया था कि पांचवें इमाम वो इमाम है जिनकी जिंदगी में उमर इब्ने अब्दुल अजीज आया था, जिसने 2 साल हुकूमत की फदक वापस किया, मिंबर से मौला के खिलाफ सबको शतम बंद कराया, तो कुछ जरा उसकी तफसील बताना थी, अब वक्त नहीं रहा, मुख्तसर बात, मुख्तसर असल मौजू पे आ रहा हूं, वो भी एक जिमनी बात थी, असल मौजू इसके बाद शुरू होने वाला, लेकिन आखिरी बात सुन लीजिए, ये बात जो चल रही है तमहीदी ये खत्म हो, आखिरी इसकी बात फिर असल मौजू पे आता हूं, कहा इल्म और इबादत दोनों को मिलाओ तो मोमिन बनता, और दोनों को मिलाओ तो इमाम का लकब बाकिर बनता, बाकिर इल्म के हवाले से भी है, बाकिर इबादत के हवाले से भी, लेकिन इसके बाद फिर जहां से हमारी मजलिस शुरू हुई थी और 40 मिनट हो रहे तकरीबन, हो गए बल्कि 40 को क्रॉस किया हमने, तो वहीं से रब्त वहीं से देना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो उसूल कुरान ने बताया कि तुम्हें एक दूसरे के साथ नेकी के काम में ताउन करना, तो एक बात याद रखिए, आप नेकी के काम में ताउन कर ही नहीं सकते। और कुरान ने कहा गुनाह के काम में कतन एक दूसरे का साथ ना देना। आप गुनाह के काम से ना खुद बच सकते ना दूसरे को बचा सकते जब तक कि आपके पास दीन की नॉलेज ना हो। इसलिए इबादत से भी पहले, पांचवें इमाम का लकब बाकिर दो वजह से, लेकिन उसमें भी इबादत से पहले इल्म का पहलू आता। पैगंबर ने जो कहा कि मेरा बेटा बाकिर है तो इल्म के हवाले से कहा, इल्म ना हो तो आदमी ना नेकी कर सकता है ना नेकी में ताउन कर सकता, ना अपने आप को गुनाह से रोक सकता है ना गुनाह के काम से दूसरों को रोक सकता। छोटी सी मिसाल, मशहूर वाकया, बहुत ही मशहूर वाकया, बहुत ही मुकद्दस आदमी। मैं इन चीजों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों ने इन चीजों को इतना मिस यूज किया। ये आदमी की नीयत खराब नहीं, जिहालत है। ये बता दूं जिसका वाकया मैं पढ़ रहा हूं, बिहारुल अनवार में मौजूद है ये वाकया, बहुत मशहूर है, इसमें तो हवाले देने की जरूरत भी नहीं। इमाम बाजार मदीना से जा रहे हैं, बाजार मदीना में आगे आगे एक और आदमी जा रहा है, लेकिन चेहरे से बड़ा मुकद्दस नजर आ रहा, माथे में सिजदे का निशान भी है, बड़ी सी सफेद दाढ़ी भी है, लिबास भी ऐसा है, चेहरे पे अंदाज भी ऐसा है कि जैसे वाकई ये दीन का ख्याल रखता। और सुबह का वक्त है, पुराने जमाने में तो और आज भी छोटे शहरों में सुबह का वक्त बाजार छलक रहा होता, सारे कस्टमर उसी वक्त आते हैं, बाजार भरा हुआ है। ये सारी चीजें अगर मैं समझाने जाऊं कि पहले ऐसा क्यों होता था, हर चीज फ्रेश मिलती है, ये फ्रीजर और स्टोरेज का इंतजाम तो था नहीं, जो चीज है वो सुबह आएगी शाम तक बेच देना, तो सुबह के बाद हर चीज फ्रेश होती है, चाहे गोश्त हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दूध हो। तो खैर बाजार छलक रहा, इमाम ने कहा कि रश बहुत ज्यादा है, ये आदमी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, चलते चलते फल वाले की दुकान पे पहुंचा, वह रश बहुत, सब अपने अपने काम में लगे, इसने चुपके से दो अनार उठा के अपने कुर्ते में छुपा लिए। ये वाला कुर्ता जो मैंने पहना है, जो अरब पहनते हैं, उसमें दो क्या 200 अनार भी शायद आ जाए तो पता ना चले, छुपा के आगे बढ़ गए। ये आदमी इतना मुकद्दस, इतना नेक, बहुत मशहूर वाकया। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बेकरी थी, तंदूर वाले की दुकान, गरम गरम रोटियां, रोटी खाने का मजा तो उसी वक्त है कि जब गर्म हो, वरना तो लोग बीवियों को तलाक दे देते। तो गर्म गर्म रोटियां तंदूर से निकल रही, मुझे तो याद है अपने बचपने का जमाना, घर वाले मंगवाते थे जाओ 12 रोटियां ले आओ, गरम गरम रोटी होती, घर आते आते वो धसी रह जाती थी, दो जो थी रास्ते में खा ली जाती थी, वो अकेली सूखी रोटी में इतना मजा होता था। खैर तो अभी है कि वो रोटियां निकल रही है, लोग आगे बढ़ बढ़ के देख, उसने दो रोटियां उठाई, दूसरी जेब में डाली और आगे बढ़ गई। अब किसके पास इतनी फुर्सत जहां इतने सारे कस्टमर हो। इमाम ने देखा, चोर तो हर जगह होते लेकिन ऐसा चोर, शायद ये बेचारा, इस्लाम में एक जगह पे चोरी वाजिब है, शायद ये बेचारा भूख से मर रहा, लेकिन क्या देखा कि आगे बढ़ा, मदीने से बाहर निकला, बाहर एक बीमार आदमी जमीन पे पड़ा, ये चारों चीजें उसको देखे आगे। ये तो और अजीब बात, रोक लिया इमाम ने वापसी और कहा कि अरे शख्स, ये तूने क्या किया, मेरे सामने तूने बाजार में चोरी किया, फिर अपने लिए नहीं रखी वो चीज, तूने उठा के दे दी राय खुदा में। उसने सर से पैर तक इमाम को देखा और कहा कि ऐसा लग रहा है कि तू बिल्कुल जाहिल आदमी है, ये लफ्ज था उसका, नऊज़ बिल्ला, ना तुझे कुरान पता है ना इस्लाम पता है, इमाम से कह रहा है, वो तो नहीं पहचानता कि ये इमाम। मैंने कहा जाहिल, इसमें जिहालत की क्या बात। कहा देख, जिस कुरान को हम मानते हैं उसमें लिखा है कि मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी करो 10 टाइम्स अजर मिलेगा। मैंने 4 नेकियां की है तो 40 हो गए। और उसी कुरान में है कि मन जा बिल हसना फला युज्जा इल्ला मिस्लुह, जो एक गुनाह करेगा तो एक गुनाह की एक ही सजा। मैंने 4 गुनाह किए, 4 चीजें चोरी की तो 4 मेरे पनिशमेंट हो गए। 40 नेकियां कमाई, 4 मैंने गुनाह कमाए, 40 - 4 = 36, ये इस पूरे मसले में 46 नेट नेकियां मैं कमा के यहां से जा रहा हूं, और तू मुझसे पूछ रहा है कि मैंने क्या किया। ऐसे कैलकुलेटर, ऐसे मोबाइल हमारे यहां भी बहुत से लोगों के पास हैं। इमाम मासूम ने फरमाया, वाह हो तेरे ऊपर, कैसा शैतान ने तुझे धोखा दिया। तूने ये जो आयतें पढ़ी और तीसरी आयत नहीं पढ़ी कि इन्नमा यतकब्बल अल्लाह मिनल मुत्तकीन। अल्लाह अमल तो कबूल ही उस वक्त करेगा जब तुम मुत्तकी हो। जहां तूने चार चीजें चोरी कर ली, तकवा तो रहा नहीं। अब जब तकवा नहीं रहा तो नेकी तो कोई कबूल नहीं है। जो चार गुनाह किए वही तेरे नामा अमाल में है। तूने 36 नेकियां नहीं कमाई है, तूने चार गुनाह कबीरा इस मसले के अंदर हासिल किए। वो कुरान की आयतों से अपनी बात साबित कर रहा। हमारे यहां गुमराह से गुमराह चीज, मिंबर पे दो आयतें दो हदीसें पढ़ी, मजमे ने कहा वाह इन्होंने अपनी बात साबित कर दी। और आयतें देखी और हदीसें देखी, अब देखिए नेकी करने जा रहा। ये वैसा आदमी नहीं है जो जानबूझ के गुनाह करना चाहता या फ्रॉड करना चाहता। नेकी करने जा रहा अपने ला इल्मी की बिना पर, जिसे नेकी समझ रहा है वो गुनाह बन रहा। और हमारे यहां इसके केसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए पांचवें इमाम ने फरमाया कि हमारे शिया की पहली पहचान ये कि वो हलाल और हराम का ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करता। हलाल और हराम के इल्म के बगैर आप दो रकत नमाज का सवाब अल्लाह से नहीं ले सकते। नमाज गलत पढ़ रहे हैं। एक दुआ का सवाब नहीं ले सकते। जहां बैठ के दुआ पढ़ रहे हैं वो जगह मुबाह होनी चाहिए, मालिक की परमिशन हो, वरना वहां ठहरना हराम। और इसीलिए पांचवें इमाम के बारे में जुमला कि सबसे ज्यादा इल्म को फैलाया। छठे इमाम का लकब भी बाकिर नहीं है। छठे इमाम ने पांचवें इमाम के मदरसे को मुकम्मल किया है, स्टार्ट करने वाले पांचवें इमाम। और अजीब अजीब मसले पेश आते थे। वक्त की कमी की वजह से मैं दो मिसालें दे रहा हूं, कभी मौका मिला तो तफसील सुनिएगा। शायद इस साल के मुहर्रम के पहले अशरे में ही अल्लाह ने अगर तौफीक दी और अशरा में पढ़ पाया तो एक आध तकरीर इस पर होगी, लेकिन दो छोटी मिसालें। और वो ये है कि कूफे में एक मसला पैदा हुआ, जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन है, कल छुट्टी भी है, ऑफिस भी नहीं है, तो घंटे के बदले सवा घंटा भी हो जाए तो कोई हरज नहीं है। जरा सा अब ये मैं वो मिसाल दे रहा हूं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं, हमारे इंडिया पाकिस्तान के माहौल में तो पेश ही नहीं आती, लेकिन मैं पांचवें इमाम का जमाना आपके सामने ला रहा हूं। और जरा सा गौर करें तो शायद आपको यूं एक इल्मी मजा है। कूफे में एक बहुत बड़ा मसाला पैदा हो गया, इतना बड़ा कि फिर मदीने में आदमी भिजवाया गया पांचवें इमाम के पास कि आप ही इस मसले को हल करें। और मसला यह था कि एक आदमी की दो बीवियां थी, या तो एक बीवी संभालना मुश्किल है तो दो। मैंने कहा कि प्रैक्टिकल मसला नहीं, लेकिन नहीं अभी भी ठहर जाएगी, दो वाले भी आपको मिल जाएंगे। इसकी तीन बीवियां और तीसरी भी आ रही है अभी। दो बीवियां थी इसकी, और फिर इसने तीसरी बच्ची से निकाह किया। अब आजकल सारी दुनिया में चाइल्ड एब्यूज के अंदर ये मसाला आ जाता है, लेकिन 1400 साल पहले और अरब माहौल में एक आम सी बात थी। अब वो उस निकाह की बहुत मसलहतें होती है, जिनमें एक अहम तरीन मसलहत ये होती कि बाज औकात हिजाब के मसले की वजह से ये शादी की जाती है। अब हिजाब के मसले की वजह से भी शादी की जाती है, मकसद सिर्फ हिजाब होता है। उसने तीसरी भी शादी की। गौर कीजिएगा, आप थक गए होंगे क्योंकि एक घंटा होने ही वाला है। अच्छा, वो तीसरी बच्ची बहुत छोटी थी, जिसकी अभी फीडिंग वाली एज थी, शीरखार बच्ची थी जो अभी दूध पीती थी। अब हुआ यह कि जो उसकी बड़ी बीवी थी पहली वाली सीनियर, उसने इस तीसरी बीवी को दूध पिला दिया। अब इस्लाम में दूध पिलाने के रिश्ते से वही सारे रिश्ते बनते हैं जो खून के जरिए होते हैं। अब इसने, इस पहली बीवी ने तीसरी अच्छा उसकी कुछ शर्तें हैं, कितना दूध पिलाओ, कितनी देर पिलाओ, वो सारे मसले तो नहीं बता रहा हूं, मैं तो एक प्रैक्टिकल मसला जो हिस्ट्री में लिखा है वो पेश कर रहा हूं। तीसरी बच्ची को दूध पिला दिया। अब जो तीसरी बच्ची को दूध पिलाया, जैसे मसलन ये है कि 24 घंटे तक दूध पिलाया, यानी 24 घंटे जितनी मर्तबा बच्ची को ख्वाहिश हो ये दूध पिला, या बाज उलमा कहते 10 बार पिलाए, बाज कहते 15 बार पिलाए, वो अपनी तरफ, वो अपनी जगह मसलन पिला दिया इसमें। और फिर यह है कि अगले दिन ये दो दिन के बाद जो सेकेंड वाइफ थी इसकी मिडिल वाली, उसने भी इसी बच्ची को दूध पिला दिया। वो छोटी बच्ची है, किसी मसले से शादी की गई होगी। अब कूफे में जब यह मसला पता चला, जो कूफे के सबसे बड़े फकीह थे, मुश्तहिद मसला बताने वाले, उन्होंने यह फतवा दिया कि ये तीनों औरतें अपने शौहर पर हराम हो गई। है भी मसला ये है भी, लेकिन जरा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट है। रिवायत में है कि इमाम मक्के में थे और हज का जमाना करीब था, इतने 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 वाकयात इमाम के हैं, पांचवें इमाम के दौरान हज के, कभी अराफात का वाकया, वो जो अबू बसीर को हाजी देखा है कि हाजी कहाँ है, कोई शेर है, कोई चीता है, कोई लोमड़ी है, कभी वो वाकया जो अभी आने वाला है कि इमाम ने कहा तू झूठा तेरा उस्ताद झूठा, कभी वो वाकया के हबाबा ने कहा 1000 मसले तो मेरे सामने इन्होंने हल किए हाजियों के, तो अक्सर वो मौके पे इमाम वहां पे मसला आया, इमाम ने कहा बात सही भी है गलत भी, इसकी पहली बीवी हराम हो गई अपने शौहर पर, तीसरी बीवी हराम हो गई, दूसरी हराम नहीं हुई, उसको रखे अपने पास। कहा कि नहीं मौला, मौला वो जो कूफे के मुश्तहिदीन है वो कहते तीनों हराम हो गई। अच्छा अब हराम कैसे हुई, ये थोड़ा सा आज इस वक्त आपसे एक पजल टाइप का मैं टाइम मांग रहा हूं। देखिये पहली बीवी ने जब इसकी तीसरी बीवी को दूध पिला दिया, तो अब ये तीसरी जो थी बीवी ये इसकी बेटी हो गई, इस शौहर की, इस मर्द की बेटी हो गई। इसकी बीवी ने जिसको दूध पिलाया, एक शख्स की बीवी जिस जिसको दूध पिलाई वो उसकी मां बन जाएगी, और वो जो शौहर है वो उसका बाप बन जाएगा, बेटी होगी। तो बेटी तो बाप के लिए हराम है, उसकी बीवी हो ही नहीं सकती, निकाह टूट गए, बेटी होगी। लेकिन जब वो दूध पिला रही थी उस वक्त तक तो बेटी नहीं हुई थी, उस वक्त तक तो बीवी थी। तो जब पहली बीवी ने इस तीसरी को दूध पिलाया, तीसरी को, तो वो बन गई इस तीसरी की मां ना, और ये तीसरी है आदमी की बीवी, तो ये पहली बीवी बन गई इसकी सास। दूध पिलाए तो मां बन गई ना, बीवी की मां बन गई, पहली बीवी मां सास बन गई और तीसरी बीवी बेटी बन गई। गौर कीजिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए, कभी मसला पेश नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इमाम का तरीका इस्तेदलाल। इमाम ने फरमाया जब पहली बीवी ने दूध पिलाया उस बच्ची को, तो वो उसकी बीवी थी शौहर की, तो दूध पिलाने वाली जो थी वो मां हो गई उस बच्ची की, यानी बीवी की मां हो गई सास, सास हराम। और दूध पिलाया उस बच्ची को, तो पहली बीवी है ना, तो जिसको दूध पिलाएगा वो बेटी बन जाएगी। और फिर जब दूसरी बीवी ने दूध पिलाया, जब कूफे के मुश्तहिदीन ने कहा कि चूंकि उस दूसरी बीवी ने भी इसकी बेटी को दूध पिलाया, तीसरी बेटी बन चुकी है ना, तो वो भी सास हो गई ना, तो पहली भी गई, दूसरी भी गई, तीसरी भी गई। पहली गई वो सास बनी, दूसरी गई वो भी सास बनी, तीसरी गई वो बेटी बनी। इमाम ने कहा पहली और तीसरी तो सही है, दूसरी कैसे सास बन गई? क्योंकि जब पहली ने तीसरी को दूध पिलाया, खाली हमारी मीडिया टीम है लेकिन उसकी परेशानी में देख रहा हूं, तो जो सुन रहे होंगे वो तो कितने परेशान होंगे अगर अब तक बैठे बंद करा के चल न दिए। पहली ने तीसरी को दूध पिलाया, पहली हराम और तीसरी हराम, क्योंकि तीसरी बेटी बन गई। जब वो बेटी बन गई तो निकाह टूट गए, जब निकाह टूट गया और अब आके दूसरी ने दूध पिलाया तो ये सास नहीं बनी, ये जो है इसकी तीसरी, इसकी बीवी नहीं है आदमी की, अब बेटी बन गई है, बीवी नहीं रही। जब बीवी नहीं रही और उसको दूध पिलाया, तो शौहर की बेटी को दूध पिलाने में क्या हर्ज? शौहर की बीवी को दूध पिलाना गलत है, बेटी को दूध पिलाना तो गलत नहीं। हाँ, जब पहली दूध पिला रही थी उस वक्त तक ये बच्ची जौजियत में थी तो सास बनी, दूसरी ने जब दूध पिलाया तो रिश्ता टूट चुका था। जब रिश्ता टूट चुका था और अब दूध पिला रही है तो कोई सास का रिश्ता नहीं बनेगा। जाओ जाके कहो कि पहली और तीसरी बीवी हराम है, दूसरी को अपने पास रखे। अब एक नहीं, ऐसे कई वाकयात हैं, तो मैंने सिर्फ चाहा कि आज आपके सवाब को बढ़ाऊं, क्योंकि फिकही मसले पे गौर करने का भी अपना एक सवाब है। अब ये एक मसला, अब आइए दूसरा, मदीने का मसला सुनिए। ये हलाल और हराम के मसले और ये सारे प्रैक्टिकल मसले, ये आज भी आगा सिस्तानी की किताब में मसला लिखा है, अलबत्ता वहां तीन बीवियों का नहीं, क्योंकि तीन बीवियों का रेयर केस है, दो बीवियों का है, बड़ी बीवी छोटी बीवी, बड़ी ने छोटी को दूध पिला दिया, क्या होगा? ये आज भी मौजूद है मसला, प्रैक्टिकल मसला, आगा सिस्तानी की किताब में भी है। आइए अब दूसरा मसला सुनिए, आइए दूसरा मसला बहुत प्रैक्टिकल है, यहां आके तो फिर भी थोड़ा हल हो गया, लेकिन अभी यहां भी कभी कभी उठता। रावी आया मदीने में इमाम के पास और पूछा, मौला क्या पनीर खाना जायज है? पनीर यानी चीज। ये अक्सर कराची में उठता था मसला, क्राफ्ट की चीज हराम है, खास क्राफ्ट के लिए मसला अक्सर आता था। उसकी वजह यह थी कि बाकी पनीर तो पाकिस्तान में लोकल बनती, क्राफ्ट की आती थी नॉन मुस्लिम मुल्क से। अब तो यहां आकर आप बैठ ही गए नॉन मुस्लिम मुल्क में, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जवानी क्राम की चीज आराम में मौलाना सादिक साहब ने कह दिया, उस वक्त ये नाम चलता था, अब उल्टा। अब जो मैंने कह दिया वो तो गलत होगा ही। और दूसरा वो चाइना ग्रास आराम, ये दो मसाले मेरे नाम से लोग आके मुझे बताते थे। कौन लोग बताते थे? आपको यकीन नहीं आएगा, मेंबर पे बैठ के सब बता रहा, अर्ज कर रहा हूं। दुबई में एक साहब मेरे का पता है मौलाना, आपको सादिक साहब कोई कराची में होते हैं, उन्होंने क्राम चीज को आराम कर दिया चाइना ग्रास को। मैंने कहा कौन साजिद साहब होते हैं? वो आपके सामने बैठे हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं। खैर, तो पांचवें इमाम से आके सवाल किया उसने, और जिन साहब ने जुमला काम है उनका नाम लूंगा तो कराची वालों को तो यकीन नहीं आएगा, इतनी फेमस पर्सनैलिटी है कराची की। फिर उन्होंने दो जुमले बुराई के कहे, देखिए वो सबको गुमराह कर रहे हैं। एक आप है, कितनी अच्छी मजलिस आपने पढ़ी है, दिल खुश हो गया। आपका इंडिया के किस शहर से ताल्लुक? मैंने कहा मैं ही हूँ सादिक साहब का। तो वापिस आ जाओ असल वाकये पर, मौला पनीर जायज है? इमाम ने कहा जायज है, पनीर में क्या मसाला? ये गुलगुले यहां भी उठते हैं ना, कभी लिस्टें आ जाती हैं, कभी इंटरनेट के ऊपर चीजों के नाम आ जाते हैं, कभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फुला हराम फुला हराम फुला हराम फुला हलाल, खाने पीने की चीज। ये सारे प्रैक्टिकल मसले हैं, यानी हदीसें इतनी मोतबर हैं कि आज के मराजे भी इसी पे फतवा दे रहे हैं। इमाम ने कहा बिल्कुल जायज है, ये मुस्लिम मुल्क की बात हो रही है, वहां भी चीज हलाल है कि हराम उसमें प्रॉब्लम आता, क्योंकि चीज जब बनती है एक ऐसे प्रोडक्ट से बनती है जिसको रैनेट कहते हैं, रैनेट और पेप्सिन। खैर पेप्सिन बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन रैनेट, और रैनेट यूजुअली मुर्दा जानवर से निकाली जाती है जो अन इस्लामिक तरीके से जबाओ। मुस्लिम ममालिक में भी, मुसलमान मुल्कों में भी जो जानवर खुद मर जाते हैं उनके बॉडी से, उनके स्टमक से रैनेट निकाली जाती है और उससे चीज बनाई जाती है। चीज बन नहीं सकती जब तक के रैनेट इस्तेमाल ना हो। अगर मुसलमान मुल्कों में तो फिर भी चांस है, हो सकता है कि हलाल जानवर से ये रैनेट लिया गया, हो सकता है हराम से, लेकिन बहरहाल मुसलमान मुल्कों में भी बहुत से जानवर खुद से मरते हैं कि नहीं मरते, ठीक है वो नजीज होगा फेंको उठा के, लेकिन जो उसकी काम की चीजें जो इस्लाम में जायज है उसमें रैनेट है वो निकालो, उसी से चीज बनेगी। अब ये रावी आके सवाल कर रहा, 1400-1300 साल पहले का मसला, आज तक हमारी कौम कंफ्यूज है, व्हाट्सएप ग्रुप हो के, फेसबुक हो के, और बहुत सारे सोशल मीडिया के नेटवर्क, ये हराम ये हराम ये हराम, खास तौर पर चीज। रावी ने कहा मौला क्या चीज हम खा सकते हैं? इमाम ने कहा बिल्कुल खा सकते हैं, हलाल चीज है, वो दूध से बनती। कहा मौला लेकिन ये हो सकता है ना कि वो जानवर खुद मर गया हो। अब ये हलाल हराम चीजों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लफ्ज हो सकता है, जहां आपने हो सकता है कहा वहां पे अक्सर चीजें हलाल हो जाती, दैट मीन्स कि अभी आपको खुद भी कंफर्म नहीं है उसकी नजासत का। कुछ लोग सुपर मुत्तकी होते हैं। तो इसने कहा कि मौला ये तो चीज जो बनती है तो वो तो हराम जानवर से, अरबी में उसको कहते हैं अनफहा, फ फारसी में कहते हैं पनीर माया, इंग्लिश में कहते हैं रैनेट। ये जानवर के स्टमक में कुछ एक लेयर होती है, उससे निकाल के बना। कहा मौला हो सकता है कि वो जानवर मर गया, खुद ही जबाना हुआ मर गया इत्तेफाक, उसका रैनेट इस्तेमाल किया और वो चीज आई हो। इमाम ने कहा, इमाम ने उसको जरा समझाया। इमाम ने कहा देखो अगर एक मुर्गी मर जाए और उसके पेट से अंडा निकले, मर गई खुद ही तो हराम हो गई। इसमें तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में फर्क ही नहीं है, जो खुद मर जाए वो तो हराम है, वो तो है ही मुर्दार। अब उसको तुमने काटा तो अंडा निकला, क्या तुम ये अंडा खाओगे? नहीं खाऊंगा। मसला भी यही, जब मुर्गी हराम हो गई क्योंकि खुद से मरी है, जबा नहीं हुई, तो अंडा भी हराम हो गया। इमाम ने कहा ठीक, अब ये अंडा इसे जो निकला ये खाना हराम है, तुम ना इसकी जर्दी खाओगे ना सफेदी। ये अंडा अगर किसी जिंदा मुर्गी के अंडों के साथ उसके नीचे रख दिया जाए और वो जिंदा मुर्गी जो है वो अंडे पे बैठे, अब आजकल तो मशीनें भी आ गई हैं मसनू, लेकिन मुर्गी के नीचे रख दिया, जिंदा मुर्गी है, इससे बच्चा निकल आया, फिर वो बच्चा जरा बड़ा हुआ और सबा हुआ, वो खाओगे कि नहीं खाओगे? खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा, वो तो हलाल है बिल्कुल। इमाम ने कहा जो असल अंडा था वो हराम था, और उस अंडे से जो बच्चा बन गया, ये शरीयत में एक बहुत बड़ा मसला अपनी जगह है कि कुत्ता अगर मतलब नमक की कान में माइन गिर के नमक बन जाए वो नमक हलाल है। वो नमक किस शेप का होगा? बिल्कुल कुत्ते की शक्ल, उसकी दुम भी नजर आएगी नमक की और उसके पंजे भी नजर आएंगे, वो हलाल। और बहुत सारी इसकी मिसालें। तो आप कहा कि ये तो खा लूंगा मैं, अंडा हराम था क्योंकि वो मुर्दा माँ से निकला, अंडे से जो बच्चा निकला तो चीज ही बदल गई। क्या इसी तरीके से पनीर का मसाला है कि अगर वो जानवर खुद से मर गया लेकिन वो जो इसके अंदर सब्सटेंस है उससे अगर पनीर बनाई गई तो बिल्कुल जायज है। और एक बात याद रखो, ये है उसूल असल। मुसलमानों के बाजार में जो चीज बिक रही है उसके बारे में शक करने की इजाजत ही नहीं है जब तक के 100%, ये इमाम के जुमले, जब तक के 100% यकीन के साथ कोई आई विटनेस आके ना बता दे कि इसके अंदर ये गड़बड़ हुई। कोई शक में पड़ने की जरूरत ही नहीं। जो चीज मुसलमान के बाजार में है या मुसलमान दुकानदार बेच रहा है ये कह के हलाल है तो मैं कुछ ज्यादा नहीं पूछना। देखिए ये पिलर है हमारी फिका के, इस पर पूरी फिका का दारोमदार है। कोई आदमी खुद तकवा करना चाहे तकवा करे, वो आम लोगों को नहीं बता सकता। ये इमाम एक देखिए किस तरह समझा के, वो पहला मसला था मामलात का, निकाह का, शादी ब्याह का, हराम औरत हलाल औरत, ये मसला है खाने पीने का। और पता नहीं आज मैं 15-20 एग्जाम्पल लेकर आया था, लेकिन अब क्या करूं, वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया और मुझे पता है कि हर एक को इससे दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जो मसले अब तक मैंने बताए ये प्रैक्टिकल मसले हैं और आज के मर्जी आगा सिस्तानी का भी यही फतवा है। और चीज के लिए फिर कह दूं कि वो तो चूंकि मदीने के बारे में पूछ रहा था, वरना रैनेट तो नॉन मुस्लिम मुल्क में भी कुत्ते और सुअर के अलावा जो जानवर खुद से मरे या नॉन मुस्लिम जबा करे उसका रेनेट हलाल है और उससे बनी हुई चीज भी हलाल है। लेकिन कब, जब ये इमाम की सीरत खाली नारा लगाने के लिए ना पढ़ी जाए, बाकायदा देखा जाए कि इमाम हमको इसके जरिए मैसेज क्या दे रहे। लेकिन यहां पे बहुत ही अजीब हदीस हमारे पास आती है जिसके समझाने का वक्त नहीं, लेकिन हदीस पढ़ रहा हूं। पहला जुमला, इमाम मक्के के सहन में बैठे और एक खास अंदाज से बैठे हैं, जिसमें बहुत हैवी था, मैं समझा चुका हूं शुरू में। कबीला बनी जमीला का कोई शख्स आता है और आने के बाद कहता है कि मौला ये बता दीजिए कि खाना काबा सबसे ज्यादा अफजल है क्या इस दुनिया में? काबे की जमीन काबा सबसे ज्यादा अफजल? इमाम ने कहा बेशक काबा सबसे ज्यादा अफजल। कहा लेकिन जो हमारी कौम के आलिम, एक आलिम था जो पहले ईसाई था बाद में कन्वर्ट होके मुसलमान हुआ, बहुत सारे ऐसे नॉन शिया हैं जो कन्वर्ट होके शिया हुए, इनमें कुछ मुखलिस हैं तो कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमारी कौम में आए, वो हमारी कौम का अमल भी बिगाड़ रहे हैं, वो हमारी कौम का अकीदा भी बिगाड़ रहे हैं। कहा ये मेरे साथ जो आया ये कहता है कि नहीं बैतुल मकदस सबसे ज्यादा अफजल है, बल्कि खाने काबा रोज बैतुल मकदस को सिजदा करता है।
इमाम वाखान रावी, रावी कौन है? जुरारा है, जुरारा। ये नाम हम सुनेंगे हमारा सर एहतराम से झुकता चला जाता। यून एक बहुत ही अजीम शख्सियत थी, उनके तीन चार बेटे, मालिक है, जुरारा है, कई हैं, हमरान है, बहुत अजीम खानदान है ये पांचवें इमाम के साहबियों में। जुरारा कहते मैंने जिंदगी में कभी पांचवें इमाम को इतने गुस्से में नहीं देखा। इमाम ने कहा तू झूठ बोल रहा, और ये जो तेरा आलिम है, तेरा उस्ताद, ये भी झूठा, तू झूठा, ये झूठा। खाने का भावे तरजीह देता है किसी और जगह को। क्या तुझे नहीं पता कि अल्लाह ने इस कायनात में काबे से ज्यादा अफजल, इस दुनिया में काबे से अफजल कोई जगह नहीं बनाई? ये काबा तो वो है, सूरह तौबा की आयत, इन्ना इद्दत शुहूर इस्ना अशर इंदल्लाह यौम खल्क समावात वल अर्ज। कुरान की आयत सूरह तौबा की, क्या महीने 12 हैं अल्लाह के पास, जिस दिन से जमीन और आसमान बने हैं, अरबातुन मिना हुरम, उनमें चार काबिल एहतराम। इमाम ने कहा ये चार काबिल एहतराम महीने जिस दिन से यौम खल्क समावात वल अर्ज, जिस दिन से जमीन और आसमान बने, ये चार महीने काबिल एहतराम क्यों है? काबे की वजह से। तीन वो काबिल एहतराम है जो हज के हैं, चौथा वो काबिल एहतराम है जो उमरा रजबिया। देखिए चार काबिल एहतराम महीने कौन से? हज का महीना, ये जो अभी चल रहा, इससे एक महीना पहले जब काफिले चलने लगते हज के लिए, एक महीने बाद तक जब काफिले हज करके अपने अपने घर जा रहे होते, तीन महीने काबिल एहतराम है हज की वजह से। बीच वाला हज का महीना, उससे पहले वाला हाजियों के आने का महीना, उसके बाद वाला हाजियों के घर जाने का महीना, और चौथा महीना रजब, क्योंकि रजब का उमरा का खाने खुदा की खातिर अल्लाह ने जिस दिन जमीन और आसमान बनाए उस दिन इन चार महीनों को काबिल एहतराम करार दिया, और तू कह रहा है काबे से भी ज्यादा कोई काबिल एहतराम जगह? तू झूठा, तेरा आलिम झूठा। ये इमाम को इतने जलाल में कभी नहीं देखा। और क्या तुझे नहीं पता कि खाने काबा है जो तेरी जन्नत और जहन्नम का फैसला करेगा? जुरारा चौंके, अब जुरारा चौंके, इमाम के साहबी का मौला, ये समझ में नहीं आया जुमला आपका का। सुनो, जब अल्लाह ने तमाम इंसानों की रूहों को खल्क किया था तो सबसे एक अहद लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, ये तो कुरान में है ना, मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं। अब जिस जिसने इकरार किया, कालू बला, सबने का इकरार किया, अल्लाह ने कलम से कहा, लौह कलम, लौ नहीं, कलम से कहा, कलम से, इन सब के नाम लिख लो, सब ने, सब के नाम लिखे गए, वो सारे नाम अल्लाह ने हजरे अस्वद पत्थर के अंदर छुपा के रखे, और उस पत्थर को लाके काबे में लगाया ताकि जितने लोग खाने काबा में आए ये पत्थर गवाही दे। आपको शायद याद ना हो, या सुनने वालों में से बास को पता ना हो, अल्लाह हर मोमिन मोमिना को एक बार तो हज बैतुल्लाह की जियारत जरूर नसीब करे। मैंने करबला इसलिए नहीं कहा कि आज शिया कौम में शायद कोई ऐसा नहीं है जो करबला होके ना आया हो गुज़श्ता 8-10 सालों में, वरना तो आइए भी, लेकिन हज सबके नाम जिस दिन रूप, जब हम हजरे अस्वद की जियारत करते हैं ना, कब, जब हम अपना तबाब शुरू करते हैं, हजरे अस्वद को देख के क्या दुआ पढ़ते हैं, आज भी जाके आगा सिस्तानी की किताब में देखें, आगा खामिनाई की किताब में देखें, आगा खोई की किताब में देखें, اللهم اني امانتي اديتها, आज मैंने अपनी अमानत को अदा कर दिया। वो जो मैंने अमानत, जब मेरी रूह थी, मैंने इकरार किया था तू मेरा रब है ना, आज मैं उस अमानत को अदा कर रहा हूं। वमीसाकी ताअहतु, और जो मीसाक, मीसाक माने मुहायदा, एग्रीमेंट, पैक्ट, जो मेरा मुहायदा और पैक तुझसे था, आज मैंने उसे पूरा किया है, बिल मुवाफात अदा किया है, लतशहद ली, ताकि तू गवाह बने इस पत्थर के जरिए। ये पत्थर नहीं है। अच्छा, पहले ये हदीस लोगों को समझाना मुश्किल होती थी, मौलाना वो आदम से लेके कयामत तक सारे उन मोमिनों के नाम इस पे लिखे हैं जिन्होंने अल्लाह को रब माना। अब आजकल चिप और माइक्रोचिप और माइक्रो की माइक्रोचिप की माइक्रो की माइक्रोचिप, और इतना सा एक पेंसिल से आप पॉइंट लगाए उसमें करोड़ों गीगा वाइड और मीगा वाइड, ये सब लोग बैठे हैं गीगा मीगा वाले, मुझे तो कुछ नहीं पता क्या चीज होती है गीगा और ट्रीगा और क्या क्या, वो सब इतने से नुक्ते में आ जाते हैं। आज कितना आसान हो गया ये हदीस समझाना, और वो दुआ आज भी है कि हजरे अस्वद को देख के ये दुआ आपको पढ़ना है। मैं अपने पूरे काफिले को पढ़वाता था हमेशा, और याद दिलाता था कि इस दुआ का मतलब क्या, کہ اے خدا امانتی ادے تو آج میں اپنی امانت کو ادے تو ادا کر رہا ہوں. وہ میساقی ہو جو میرا میساق جو میرا ایگریمنٹ تجھ سے ہے, تو آہد تو جو عہد میں نے تجھ سے کیا ہے, بالموافات آج میں اس کو وفا کر رہا ہوں. لتشہد علی بذالک, تاکہ تو گواہ بن اس پتھر کے ذریعے سے. یہ پتھر نہیں ہے, یہ تمہارے ایمان کی گواہی ہے. یہ اس حدیث کے آخر میں امام نے زرارہ کو بتایا. اب یہ ایک حدیث آپ نے سنی جس میں امام نے اس کو جھوٹا قرار دیا جو خانہ خدا کی عظمت کو گھٹا رہا ہے, کیونکہ مہینہ حج کا ہے اس لیے میں نے. اور ایک حدیث اور سن لیجیے, اس دوسری حدیث پہ مجھے بہت 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 پڑھنا تھا, وقت نہیں. انشاءاللہ امکان نظر آ رہا کہ یہ میرا موضوع بن سکے گا ایام عظام میں. امکان کیوں نظر آ رہا ہے؟ ملبن کے حالات دیکھ کر. وہ کیا حدیث؟ امام کی حدیث, رحم اللہ علی جابر ابن یزید ولعنت اللہ علی مغیرہ ابن سعید. رحم اللہ علی جابر ابن یزید الجعفی, جابر ابن یزید ولعن اللہ علی مغیرہ ابن سعید. اللہ کی رحمت ہو جابر جعفی پر اور اللہ کی لعنت ہو مغیرہ ابن سعید پر. جابر جعفی مولا کے بہت فضائل جانتے تھے, اتنے کہ آج تک کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تو غالی ہو گئے تھے. ہر آدمی غالی نہیں ہوتا ہے فضائل بیان کرنے والا. یاد کیجئے لاسٹ ایئر یہی مجلس میں پڑھ رہا تھا, یہ جابر وہ ہیں جنہیں امام اپنے اندر کے کمرے میں لے کے اسپیس ٹریول کیا, بلیک ہول سے نکال کے ملکوت سماوات ورض دکھائے, جابر کو لے کے گئے. جابر نے اتنے فضائل دیکھے اہل بیت کے کہ آنے کے بعد کہا مولا میرا سینہ پھٹ رہا ہے, دل چاہتا ہے کسی کو بتاؤں. کہا خبردار اپنی بیوی کو بھی نہ بتانا, اگر سینہ پھٹنے لگے تو جنگل میں جا کے گڑھا کھودو اور اس میں منہ ڈال کے ہمارے فضائل بتاؤ. ہمارے فضائل ہرکس و ناکس کو نہیں بتایا کرو, ہر ایک یقین بھی نہیں کرے گا. آج بھی کچھ کتابوں میں آپ کو ملے گا, شیعہ کتابوں میں, جابر پہ توجہ نہ دینا, وہ خالی تھا بہت زیادہ فضائل بیان کرنے والا. اور اس کے اتنے فضائل اس نے بتایا, مولا نے کہا اس پہ اللہ کی رحمت. اور ایک ہے مغیرہ ابن سعید, اس نے بھی مولا کے بہت فضائل بتا, لیکن کیا فضائل؟ ہمیں پیدا کرنے والے علی ہیں, ہمیں روزی دینے والے علی ہیں, ہماری زندگی علی کے ہاتھ میں ہے, جو علی چاہے, علی ہی ہمارا رب ہے, علی ہی ہمارا خدا ہے. ارے علی جو نظر نہ آئے تو وہ اللہ ہے اور نظر آ جائے تو علی ہے. یہ مغیرہ ابن سعید نے حدیثیں بتائیں. امام نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. لقد دسس, چھٹے امام نے بعد میں کہا مغیرہ ابن سعید کون تھا؟ یہ میرے بابا کا شاگرد تھا, لیکن میرے بابا کے نام پہ جھوٹ باندھتا تھا اور وہ حدیثیں لاتا تھا جس میں ہم لوگوں کو اللہ بنا رہا. ہمارے یہاں نا کوئی خطبہ افتخاریہ پڑھتا ہے, جو کوئی خطبۃ البیان پڑھتا ہے تو کون سا خطبہ پڑھتا ہے, جی تو کتاب میں لکھا. چھٹے امام کا جملہ سنیں, چھٹے امام کا جملہ سنیں. امام فرماتے ہیں کہ جو میں نے اپنے صحابیوں کو کتابیں لکھوائی, میرے بابا نے پانچویں امام نے اپنے صحابیوں کو اپنی حدیثیں لکھوائی. ایک راوی محمد ابن مسلم کہتا 30,000 حدیثیں تو میں نے پانچویں سے سنی. 30,000, یہ جابر جس کا بھی تذکرہ, وہ 14,000 حدیثیں میں نے سنی ہیں. تو امام نے کتابیں لکھوائی. پرانے زمانے میں صرف کتاب ایک کاپی ہوتی تھی, کیونکہ ہاتھ سے لکھنا پڑتی تھی, کوئی پرنٹنگ نہیں ہے, وقت نہیں ہے, میں بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں. چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا فلاں کے پاس چلے جاؤ, اس کے پاس چھٹے پانچویں امام کی ایک کتاب ہے, وہ لے آؤ مجھے پڑھنا. وہ بیچارہ ان گڈ فیتھ جا کے لاتا. چھٹے امام پوری تفصیل بتا رہے ہیں, رجال کشی کی روایت ہے, شیخ طوسی کی کتاب. کہا یہ گھر میں کتاب لاتا اور جو ہماری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا ہمارے انتہائی اتھینٹک راویوں کی, اپنے قلم سے اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہے, کچھ ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور کتاب واپس کر دیتا ہے. اتنی موٹی کتاب جب واپس آئے گی روزانہ تو کتاب کوئی نہیں پڑھے گا. وہ حدیثیں آ گئیں جو جھوٹی حدیثیں, لکھی ہوئی کس کی ہیں؟ امام کے اتھینٹک صحابی کی. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں جیسے سلمان فارسی کی, مگر اس کتاب کے اندر اس نے, کیونکہ پرنٹنگ تو ہے نہیں,
कहीं एक लफ्ज बढ़ा दिया, कहीं एक लफ्ज कम कर दिया। इमाम ने कहा जितनी हदीसें वो है जिसमें हमको अल्लाह जैसा बनाया जा रहा है वो सब झूठी हदीसें जो इस आदमी ने हमारे ऑथेंटिक सहाबियों की किताब में शामिल की। मुगैरा इब्ने सईद का नाम याद रखिए। इमाम ने कहा जैसे बनी इसराइल में बलम बाउरा था जिसको कुरान ने कहा मिसलहू का मिसलिल कल्ब, ये तो कुत्ता, कुरान का लफ्ज है मिसलहू का मिसलिल कल्ब, बलम बाउरा की मिसाल कुत्ते जैसी है। इमाम ने कहा ये हमारी उम्मत का बलम बाउरा। वो भी बहुत बड़ा आलिम था, गड़बड़ करने लगा। बहुत छोटी मिसाल देता हूं, अब सवा घंटा हो रहा है, दो जुमले मसाइब के छोटी सी मिसाल। ये 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, अपने वाकयात इसलिए बयान करता हूं ताकि ये आपको इत्मीनान हो जाए कि कोई सुनी सुनाई बात नहीं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, पिछले साल इंतकाल हुआ, अल्लामा जावेद जाफरी। जवानी में हम लोगों ने खासा वक्त कराची में साथ गुजारा था। 32 पेजेस की हदीस की एक किताब का ट्रांसलेशन किया उन्होंने, हमने और हमारे चंद दोस्तों ने छपवाया। अगर आपको आज भी मिल जाए तो उस पर पब्लिशर लिखा होगा सादिक हसन। गर्जे उसमें मेरा हिस्सा तो सिर्फ नाम की हद तक था, बाकी उनका था, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि दो नाम थे, अल्लामा जावेद जाफरी तर्जुमा, नाशिर सादिक हसन। 32 पेजेस, और ये बात है आज से तकरीबन 45 साल पहले, 76-77। दुश्मनी अहले बैत और नासिबियत पाकिस्तान में शुरू हुई थी, जस्ट स्टार्ट, ज़ियाउल्लाह का जमाना था और शाह बलीउद्दीन टाइप के लोग स्टार्ट हुए थे। हाथ से किताबत होती थी, कंप्यूटर या इन पेज, ये नूरी नस्ताली, ये सारे फोन तो थे नहीं। ईदगाह कराची में जगह है, वहां पे सारे काते बैठते थे लिखवा के लाए। वो लिखवा के लाए 1000 पेज, 1000 कॉपीज थी, वो तकसीम 8-10 जगह तकसीम की गई। तो किसी साहब ने पॉइंट आउट किया, वाकई सही था, वो कातिब कोई बहुत ही मुतासिर उस जमाने में वही किताबत करते थे, वो ज्यादातर दुश्मन अहले बैत थे। एक आध कोई तहजीब हुसैन नकवी किस्म के हमारे मोमिन थे, अच्छे है, लेकिन ज्यादातर वो थे। अब उसमें एक हदीस थी कि हर जानवर अपनी जबान से क्या कहता है, चिड़िया क्या कहती है, कौवा क्या कहता है, मोर क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग हदीस है। तो एक जानवर का था कि वो कहता है अल्लाहुम्मा लान अला मुबग़िज़े आले मोहम्मद, अल्लाह लानत भेज आले मोहम्मद के दुश्मन पर। ये था कातिब ने लफ्ज़ मुबग़िज़ उड़ा दिया, क्या बना अल्लाहुम्मा लान अला आले मोहम्मद, ऐ खुदा लानत भेज का आले मोहम्मद पर। अब वो किताब जो आपको शायद पता ना, तरीका होता है कातिब लिखता है, फिर हम लोग उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद जहां जहां गलती होती है उसको देते हैं, उसको ठीक करो, फिर छपती है, और उसके बाद लास्ट स्टेज में जाके उसने प्रेस से वो उड़वा दिया। अब क्या हदीस बनी, छठे इमाम फरमाते हैं कि फला जानवर कहता है अल्लाह आले मोहम्मद पे लानत भेज, लफ्ज दुश्मन उसने काट दिया। ये बात कर रहा हूं 1977-78 की, प्रिंटिंग है, हर चीज की कॉपी थी, जो उससे कातिब से लिखवाया था वो भी हमारे पास मौजूद था, जाके उसको दिखाया भी। तो मेरा कहता लोग प्रेस में जाइए, प्रेस वाले ने कहा मेरे पास तो ऐसे ही आया, प्रेस भी उसी का था, कातिब भी वही था, और इमाम 1300 साल पहले कह रहे ये काम मुगैरा कर रहा। इमाम कहते हम रब नहीं हैं, उसने लफ्ज नहीं को काट दिया, हम रब हैं। ये सारे खतरे, अकीदा बिगाड़ा जा रहा, अमल बिगाड़ा जा रहा, हलाल और हराम के मसाइल बिगाड़े जा रहे, ये पांचवें इमाम का वो रोल था जो मैं एक तकरीर में समेटने की कोशिश कर रहा था। हक तो अदा ना हुआ लेकिन थोड़ा बहुत तस्करा रहा। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब देखा कि इसकी वजह, पांचवें इमाम की वजह से ये तो सारा का सारा जो हमारा एक प्लान है वो फेल हो रहा है। हम अकीदे बिगाड़ने के लिए लोगों को प्लांट कर रहे हैं शियत में। ये मुगैरा इब्ने सईद पांचवा इमाम का शागिर्द है, कई साल बैठा इमाम के पास, एक ऑथेंटिक पर्सनैलिटी इसकी बन गई लोगों में। कई सारी चीजें हमारी नाकाम है, हलाल और हराम के असली मसले बता रहे, लोगों को तकवा और इबादत सिखा रहे, लोगों के अकीदे सही कर रहे। इनको शहीद करना है, खानदान में एक आदमी को ढूंढा, हर 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 जगह एक आध तो कोई कमजोर निकल जाता, और उसके जरिए से इमाम के लिए जहर भिजवाया गया शहर मदीना में। और ये सात जिलहिज की रात आई जब इमाम जहर के असर से, देखिए 57 बहुत ज्यादा एज नहीं, जहर के असर से इतना तड़प रहे हैं और सारे घर वाले इमाम के बिस्तर के करीब जमा कि एक मर्तबा छठे को बुलाया और कहा कि मेरे बेटा मेरे बाद तू मेरा वारिस है, मैं तुम्हें ये वसीयत करता हूं। उन वसीयतों में एक वसीयत ये थी कि कफन कौन सा देना, दूसरी वसीयत ये कब्र कैसी बनाना, तीसरी वसीयत ये थी कि जिंदगी में दो दांत मेरे टूटे थे वो मेरे साथ कफन में रख के दफन करना, और एक आखिरी वसीयत थी कि मेरे बाद जितना मैं छोड़ के जा रहा हूं इसका 1/3 हर साल हज के मौके पर मिना के मैदान में आजादारी में खर्च करना। और ये जुमला कहा और पांचवा इमाम दुनिया से रुखसत हुआ। पांचवा इमाम की एक छोटी सी बच्ची थी, बाबा को दुनिया से जाते देखा, बेख्तियार आके बाप के मैयत पे गिर पड़े, बाबा मैं यतीम हो गई, तेरे बाद कौन है मेरा सहारा, कौन है मेरे सर पे हाथ रखने वाला, कौन है मेरा ख्याल करने वाला। कि अचानक सर पे हाथ आ गया और पलट के देखा तो क्या देखा, मेरा बड़ा भाई जाफर साजक मेरे सर पे हाथ रखे खड़ा है और कह रहा है कि बहन घबरा नहीं, यकीनन तू भी यतीम हुई, मैं भी यतीम हुआ, उम्मत भी यतीम हुई, लेकिन मैं हूं तो तेरा ख्याल करने वाला। ये वही तरीका तो है जब आप दो दिन बाद परसों मजलिस सुनेंगे वहां भी ये जुमला आएगा कि मुस्लिम मारे गए तो यतीमा मुस्लिम के सर पे हाथ रखने वाला हुसैन का दस्ते शफकत आ गया। आज पांचवें इमाम की यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखने वाला छठा इमाम आ गया। और फिर सुबह का वक्त आया, बड़ी शान के साथ बाबा का जनाजा लेके चले, जन्नतुल बकी में दफन किया और ऐलान कर दिया, हाय हाजियों हर साल मीना के मैदान में आना, मेरे बाबा की तरफ से कायम की हुई है, हर साल मीना के मैदान में एक शानदार मजलिस कायम की जाती है। 10 साल तक इमाम की वो जाहिरी दौलत चली और ये मजलिस होती रही इसलिए कि इमाम को उन तमाम मसाइब का अंदाजा है जो मैदान करबला में पेश आए। और क्यों, इमाम खुद आई विटनेस थे, इमाम उन मसाइब में खुद शरीक थे। नऊज़ु बिल्लाह मैं दीगर मासूमीन के मसाइब को कम नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास इल्मे इमामत से ही मसाइब थे। और पांचवा इमाम तो खुद अपनी से देख रहा, आए मेरा बाबा है उसके बदन पे कोड़े पड़ रहे, आए मेरी दादी है उसकी चादर छीनी जा रही, आए मेरी फूफी है उसके रुखसार पे तमाचे लग रहे, अरे मेरा पांचवा इमाम जिसका ताबूत बहुत शानदार उठा तो वो ये देख रहा था मेरे दादा हुसैन का ताबूत उठाने वाला कोई ना था, जलती रहती पे ये ताबूत पड़ा रहा, अरे मेरे सर पे हाथ रखने वाला मेरा बड़ा भाई तो था। वो छोटे छोटे बच्चे जो रिवायतों में जुमला है, जब ये काफिला करबला से कूफा और कूफे से शाम गया तो महमिले नहीं हैं, अमारियां नहीं हैं, माओं के हाथ गर्दन से बंधे हुए हैं, नन्हे नन्हे बच्चे गोद में हैं, जब ये ऊंट दौड़ते हैं पांचवा इमाम अपनी आंख से देख रहा है, ये बच्चे माओ की गोद से उछल के जमीन पे गिर जाते हैं। माँ फरियाद करती है, अरे काफिला रोक दे, मेरी बच्ची गिर गई, मेरा बच्चा गिर गया। उमर साथ कहता है, अरे इन्हीं इमामजादों पर से ऊंटों को गुजार दो, खुदा मालूम रास्ते में कितनी नन्नी नन्नी ऐसी कब्रें हैं, इस तरह से ऊंट गुजारे गए। तो आखिर में ज़ैनब ने अपना तरीका बदल दिया, अब जब कोई बच्चा गिरता है अली की बेटी भी अपने आप को ऊंट से गिरा देती है, इसलिए कि ज़ैनब की खातिर काफिला रोकना है, ज़ैनब को ले जाना है यजीद के पास, इनाम है। ज़ैनब गिरती गई, खुदा मालूम कितनी मर्तबा गिरी, तभी तो जब बाजारे शाम में दाखिल हुई शहजादी का सारे बाल खून से सुर्ख हो रहे थे, क्योंकि ज़ैनब खाली गिर नहीं रही हैं, दोनों हाथ गर्दन से बंधे हैं, हाथों को बढ़ा के सहारा भी नहीं ले सकती। खुदावंदा मेरे पांचवें इमाम के इन मसाइब का वास्ता,
امام کے ماننے والے اور ماننے والیاں جو جو یہ مجلس سن رہے ہیں سن رہی ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، انہیں ہر پریشانی سے محفوظ فرما خداوندہ، ان ننھے امامزادوں کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کی اولاد کو سلامت فرما، جو لوگ بیمار ہیں خصوصاً ہمارے برادر محترم کی بچی بہت بیمار ہے، خداوندہ ان سب کو شفا کامل عطا فرما، اور خداوندہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تاجیل فرما۔ اب تابوت برآمد ہو رہا ہے، آپ لوگ فیس بک پہ بیٹھے ہیں تو اس تابوت کی زیارت کریں اور نوحہ سنیں۔
باخر کا آج اٹھا، یسرب میں ہے جنازہ۔